ओम शांति। प्यार से बोले सभी ओम शांति। एक बार और बोले ओम शांति। ओम शांति का अर्थ है शांति मेरे भीतर है, शांति में धीरज है, शांति में शक्ति है। शांति ही समृद्धि है और शांति ही शक्ति है। इस ओम शांति के मंत्र को लेके हम आगे बढ़ते हैं हमारे कॉन्फ्रेंस के आज के सत्र की ओर। पिछले दो दिनों से हम जल संरक्षण, बायोडायवर्सिटी, सॉइल प्रोटेक्शन जैसे कई विषयों पर अलग अलग चर्चाएं सुन रहे हैं। साथ ही साथ हम अपने भीतर की फार्मिंग भी सीख रहे हैं। आज का सत्र आपके लिए लेके आया है विज्ञान और अध्यात्म का कोइंसिडेंट। साइंस ही स्पिरिचुअलिटी है और स्पिरिचुअलिटी ही साइंस है। बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज अज्यूम, अप्लाई, एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस। द मीनिंग ऑफ इट इज अध्यात्मता एक विज्ञान है और विज्ञान एक तर्क है, एक नई खोज है। विज्ञान अध्यात्मकता का रास्ता बताता है और अध्यात्म हमें वैज्ञानिक तरीके की सोच सिखाता है। विज्ञान कहता है विश्वास करो और अध्यात्म कहता है विश्वास करके एक बार प्रयोग करो। आपका प्रयोग आपका अनुभव बनेगा और आपका अनुभव आपके विश्वास को मजबूत करेगा। जहां बात चल रही है कृषि की, तो आज योगिक कृषि के अंदर विज्ञान और अध्यात्मता का क्या रोल है उस बात को हम स्पष्ट करेंगे और उस विषय को अपने अनुभव से स्पष्ट करने के लिए हम मंच पर आमंत्रित करते हैं हमारे कीनोट स्पीकर ब्रह्मा कुमार बालासो रुगे जी, अतिथि विशेष भ्राता जितेंद्र कुमार जी, भ्राता के रावत जी, भ्राता विनोद लाहोटी जी और आज के हमारे अध्यक्ष ब्रह्मा कुमार दशरथ भाई जी। आप सभी महानुभावों से हृदय से नम्रता पूर्वक विनती है आप इस मंच को सुशोभित करें और सभा में उपस्थित हमारे सितारों को ये निवेदन है आप ताली बजा के हमारे मेहमानों को अभिवादित करें, अभिनंदित करें। हमारा मंच सुशोभित हो रहा है अनुभवी वक्ताओं से, सुशोभित हो रहा है महान विरल व्यक्तित्व से। तो सत्र की शुरुआत में हम परमात्मा का आह्वान करते हैं। 3 मिनट मौन में बैठकर हम इस सत्र में स्वयं को भी तैयार करेंगे और परमात्मा को भी इस सत्र में अभिनंदित करेंगे। तिलक कहता है, मुझे स्वीकार कर विजय को घोषित कर दीजिए। बैज कहता है, सीने से लगाकर सम्मानित हो जाइए। पुष्प कहता है, मुझे ग्रहण कर सुगंधित हो जाइए। हमारी बहनों से अनुरोध है हमारे मंच पर आसीन मेहमानों को स्मृति का तिलक, हृदय के भाव के पुष्प और सम्मान का बैज देकर सुशोभित करें। और आपसे अनुरोध है ताली में कंजूसाई न करें। ताली बजाते रहने से एक्यूप्रेशर होता है। आप ऊपर करके भी ताली बजा सकते हैं, बहुत अच्छा एक्यूप्रेशर होगा। और नाश्ता करके आए तो फ्रेश भी हो जाएगी। और तालियों की गड़गड़ाहट हमारे वक्ताओं को मोटिवेट करते हैं, और जो पीछे बैठे हैं बिल्कुल उनसे अनुरोध है आगे आकर मंच को सुशोभित करें, आगे आकर हमारी सभा को और आप सुशोभित करें। आगे बैठने से आपका भी अटेंशन अच्छा रहेगा और हमारे वक्ताओं को भी आप बहुत अच्छे प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। और आगे काफी कुर्सियां खाली हैं, तो जो पीछे बैठे हैं कृपया आगे आ जाएं। जैसे कि सुनाया, आज का विषय है योगिक कृषि में विज्ञान और अध्यात्म का समावेश। इसका जीवंत उदाहरण, इसका जीवंत प्रसारण मैं कह सकती हूँ आपके समक्ष आ रहा है हमारे वरिष्ठ भ्राता ब्रह्मा कुमार बालासो रुगे के रूप में। आप 22 साल से इस राजयोग के अभ्यासी हैं और 19 साल से योगिक कृषि कर रहे हैं। आप ट्रेनर ऑफ द ट्रेनर्स हैं। आपने भारत के कई अलग अलग राज्यों में जाकर अनेक किसानों को योगी खेती की ट्रेनिंग दी है। आपकी आवाज में परमात्मा की प्रत्यक्षता है। परमात्मा के प्रति निष्ठा यह आपका कर्म दिखाता है। और भावनाओं में क्या शक्ति है, संकल्प में क्या बल है, ये आप उनके वक्तव्य से ही समझेंगे। तो मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय भ्राता बालासो रुगे जी को, आप आज के विषय को स्पष्ट करें।
ओम शांति। आज के इस सत्र में योगी कृषि में विज्ञान एवं अध्यात्म का समावेश, इस विषय को समझने के लिए आज के इस प्रोग्राम में आयोजित सम्माननीय मंच और उपस्थित सभी आत्मिक बंधु और बहनों, योगिक खेती का नाम जब से सुन रहे हैं तो शुरू में मुझे क्या लगा वो मैं आपको बताता हूँ। मन की शांति के लिए हम ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़े थे। एक दो साल ब्रह्मा कुमारी बहनों ने हमको प्रेरणा दिया कि आप मेडिटेशन से क्या अनुभव कर रहे हो अपने जीवन में, तो ऐसी बातें होती रहती थी। बहनों ने हमको प्रेरणा दी कि आप जिस शक्ति को अनुभव कर रहे हो अपने जीवन में, उन्हीं शक्तियों को आप अपने कर्मों में भी उपयोग करो। सिंपल सी एक सेंटेंस था और मन में विचार आया कि अब क्या इस आध्यात्मिक शक्ति को हम खेती में उपयोग करें। खेती अलग बात है, जिन बहनों को खेती क्या होती है ये भी पता नहीं है, बीज जमीन के अंदर डाला जाता है या बीज ऊपर रखा जाता है, खरपतवार क्या होती है, फसल क्या होती है ये भी पता नहीं होता है, ऐसी बहनें हमको क्या खेती सिखाएगी, ऐसे मन में एक सोच चल रहा था। परंतु इन दिव्य बहनों के अंदर वो शक्ति है, वो एक बार एक संकल्प करती है तो उसको पूरा करके ही छोड़ते ये बहने। और तब इनके मुख से हमने सुना कि हम कुछ नहीं कर रहे, हमारे द्वारा परमात्मा कर रहा है। तो उस टाइम हम नाम मात्र परमात्मा को याद करते थे कि मन को थोड़ा सुकून मिले, शांति मिले। परंतु जब इनके कहे अनुसार हम सच्चाई से खुद को जानकर परमात्मा को जानने का प्रयास किया तो उन शक्तियों का अनुभव होने लगा। और शुरू में हमारी खेती में बहनों ने प्रयोग करके दिखाया कि योगिक खेती से प्रोडक्शन में क्या फर्क आता है, जमीन की उर्वरक शक्ति कैसे बढ़ती है, सीड जर्मिनेशन कैसे बढ़ता है, सब वो बताते थे पर मन में हंसी आती थी। वो योगिक खेती का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए सबसे पहला लेसन जो आपने कल सुना वो है आत्मा का। तो ये आज मैं इसलिए इस पर फोकस दे रहा हूं क्योंकि जब तक आत्मा का पाठ पक्का नहीं तब तक योगिक खेती का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा। योगिक खेती में हम लोग मन से बात करते हैं प्रकृति से, मन से बात करते हैं पेड़ पौधों से, मन से बात करते हैं बीज से, मन से बात करते हैं जीव जंतुओं से, मन से बात करते हैं पेड़ पौधों से, पशु पंछियों से। अब यहां पर आप चित्र में देख रहे हो एक साइंटिस्ट है भारत के, सर जगदीश चंद्र बोस। इन्होंने स्पष्ट कहा कि पौधे मन के विचारों को समझते हैं। अगर मन के विचारों को समझते हैं तो मन क्या चीज है ये भी तो समझना आवश्यक है। और जब मन क्या चीज है, मन क्या शक्ति है समझना जरूरत पड़ा, तो ब्रह्मा कुमारी बहनों ने हमको बताया मन आत्मा की एक शक्ति है। और आत्मा क्या है, तो आत्मा इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति ऊर्जा है जो अभी कानों से सुन रही है, मुख से बोल रही है, आंखों से देख रही है। अगर वो आत्मा शरीर से कुछ समय के लिए अलग हो जाए तो ना ही ये कान सुन सकते हैं, ना ही आंखें देख सकती है। जिस शक्ति को हम देख नहीं सकते हैं वही आत्मा सब कुछ कर रही है, जिसका हमें पता नहीं था। हम गलती से अपने को इस विनाशी देह को खुद को समझ कर देहबान में आकर कई सारे कर्म कर रहे थे, परंतु जब सच्चाई का पता चला कि हम देह नहीं, तो देह को चलाने वाली एक आत्मा है, तो इसकी महसूसता करना, इसे ध्यान कहते हैं, जो भारत का प्राचीन योग है। ब्रह्मा कुमारी में इसके सहज राजयोग कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं, नाम अनेक है। और कई सारे शास्त्रों में लिखा है जब खुद को जानोगे तब खुदा को जानोगे। अब जगदीश चंद्र बोस एक लुइबेक्स्ट है कैलिफोर्निया, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट होने नाते जब हम लोगों को बताते हैं कि योगी क्षति करो तो लोग हंसते थे शुरू में हमें, इसलिए सचमुच क्या हमारे विचारों का असर पेड़ पौधों पे होता है, इस बात पे आज भी रिसर्च हुआ है। कैलिफोर्निया में भी एक इंस्टीट्यूट है क्लूबैक्स्टर, वहां पे भी पौधों के ऊपर हमारा सोच का असर क्या होता है। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो उसका असर क्या होता है, और हम नकारात्मक सोचते हैं तो उसका असर क्या होता है, वहां पे भी सिखाया जा रहा है। करीब पिछले 3 साल से इंस्टीट्यूट अभी बंद हो गई, क्योंकि जैसे क्लूबैक्स्टर का देहांत हो गया वो इंस्टीट्यूट अभी बंद है। अभी 2 मास पहले हमारे एक व्यक्ति गए थे, भाई गए थे कैलिफोर्निया में, क्योंकि हम लोगों को तो केवल मुख से बता रहे हैं। भारत में करीब 42 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, परंतु एक भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ऐसा मशीन नहीं है जहां पे हम अपने विचारों का असर पेड़ पौधों के ऊपर कैसे होता है ये सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हम उस मशीन को खरीदने के लिए हमारे एक भाई गए थे, पर उसको अभी लॉक लगाया इस इंस्टीट्यूट को, ताकि हम उस मशीन को खरीद नहीं पाए। समय ऐसा आएगा जो हम मशीन के द्वारा भी आपको सिद्ध करके बताएंगे कैसे सचमुच पौधे हमारे विचारों को समझते हैं। आज का विज्ञान हम कहते हैं प्रगत विज्ञान, परंतु सचमुच 1905 में सर जगदीश चंद्र बोस जी ने जो रिसर्च किया था वो आज के विज्ञान से कई ज्यादा तेज था, शक्तिशाली था। उस टाइम उन्होंने ऑप्टिकल पल्स रिकॉर्डर मशीन को तैयार करके उस मशीन के द्वारा उन्होंने सिद्ध किया था कि पौधे कैसे हमारे विचारों को रिस्पॉन्स करते हैं। इसीलिए आज भी वो मशीन कलकत्ता में जगदीश चंद्र बोस इंस्टीट्यूट में रखा हुआ है। ऐसा मशीन अगर कोई किसी यूनिवर्सिटी में तैयार हो जाएगा तो हमारी योगिक खेती सिद्ध करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कल हमारी एक 37 लोगों के साथ मीटिंग हो रही थी 3 से 4 के बीच में, वहां कई लोग कह रहे थे कि हमें इसको सिद्ध करना है, कैसे करें, क्या करें, डाटा चाहिए, बहुत सारी बातें चल रही थी। हमने कई सारे एग्री यूनिवर्सिटी में प्रयोग भी किए थे, उसका एक अनुभव बताता हूं, उस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बताएंगे हम लोग। बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था हमको, रिजल्ट में हमारा उत्पादन भी बढ़ गया था, न केवल उत्पादन परंतु उस उत्पादन की गुणवत्ता भी बढ़ गई थी। और लास्ट मोमेंट पे हम लोग आए तो यूनिवर्सिटी वालों ने सीधा सीधा कह दिया कि इस प्रोजेक्ट को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसका कारण एक ही था, क्योंकि आजकल अगर हम 1 गुनी 50 किलो यूरिया डालते हैं, 50 किलो DAP डालते हैं, तो हमारा इतना उत्पादन बढ़ता है। हम सरकार के सामने रख सकते हैं कि इतना DAP डालने से इतना उत्पादन बढ़ गया। सचमुच ब्रह्मा कुमारी इसके मेडिटेशन से भी उत्पादन तो बढ़ गया है, परंतु इसमें आपने कितना किलो मेडिटेशन डाला है ये आप सिद्ध नहीं कर पाते हो, इसलिए इस प्रोजेक्ट को हम फेल करते हैं। सफलता इसमें नहीं है ऐसे दिखाना पड़ेगा हमको, क्योंकि आज अगर उसको हम सिद्ध करेंगे कि मेडिटेशन से इतना उत्पादन बढ़ गया तो हमारे ऊपर एक बर्डन आ जाएगा कि हम कैसे सिद्ध करें इस बात को, इसलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को फेल कर दिया। तो इसकी आवश्यकता इसलिए है इस मशीनरी की, परंतु हम किसानों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। हमने प्रैक्टिकल में सिद्ध किया है, हमने अनुभव किया है, कई सारे ऐसे अनुभव किए हैं। इसीलिए ये जो विज्ञान है 19वीं सदी का वो एक परफेक्ट विज्ञान है, ऐसे मैं कह सकता हूं। आज का विज्ञान जो है केवल भौतिकता के ऊपर रिसर्च कर रहा है, परंतु आध्यात्मिकता के ऊपर कहीं भी यूनिवर्सिटी में ऐसा रिसर्च नहीं हो पा रहा है, ये हमारे दुर्भाग्य की बात है। अगर ऐसा आध्यात्मिक शक्ति के मनोबल का इफेक्ट प्लांट्स के ऊपर, प्रकृति के ऊपर कैसे होता है, ऐसा कोई रिसर्च हो जाएगा तो पूरा किसानों के जीवन में परिवर्तन आएगा। और जो हम इस भारत को देखना चाहते हैं, स्वर्णिम दुनिया में परिवर्तन करना चाहते हैं, वो बहुत अच्छी जल्दी ही हम इसको करके दिखा सकते हैं। दूसरी बात है ध्यान में मेडिटेशन में हम किसको याद करते हैं। हम सबको पता है कि यह शरीर पांच तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। इसीलिए हम रोज पृथ्वी से अनाज लेते हैं, हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, पानी पीते हैं, सूर्य से रोशनी लेते हैं, तभी हमारे शरीर रूपी गाड़ी हम तंदुरुस्त चला रहे हैं। अगर उसमें से एक भी चीज की कोई कमी होगी तो ये शरीर बीमार हो जाएगा, हम जीवन में अच्छे अनुभव नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारे पास एक गाड़ी होती है, गाड़ी में हम पेट्रोल डीजल डालते हैं तो गाड़ी चला सकते हैं, बट उस गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को अगर कोई चाय पानी नाश्ता नहीं हम देंगे तो कब तक गाड़ी चलाएगा। ठीक इसी प्रकार इस शरीर को चलाने वाली जो चैतन्य शक्ति ऊर्जा है आत्मा, उस आत्मा का स्वधर्म है ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति। ऐसे सात सूक्ष्म शक्तियों से आत्मा बनी हुई है, और आत्मा को अगर इस देह रूपी गाड़ी को चलाना है तो उसको शांति की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है, प्यूरिटी की जरूरत है, पीस की जरूरत है, वो कहां से मिलेगी। और इन सब शक्तियों का सोर्स एक परमात्मा है जिसको भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, जेहोवा कहते हैं, नाम अनेक है। अब अगर हम कहेंगे यही भगवान है तो आप लोग हंस पाओगे, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति कभी भी भगवान नहीं हो सकता है। अब आइंस्टाइन की सिद्धांत के अनुसार अगर आपको बताना है तो उन्होंने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इस बात को स्पष्ट कहा है कि भगवान किसे कहा जाए। जिसको आज का विज्ञान वैश्विक शक्ति कहते हैं, कॉस्मिक पावर कहते हैं, ब्रह्मांड की शक्ति कहता है, उसी शक्ति को, उसी शक्ति का सोर्स आउटसाइड द यूनिवर्स एक पॉइंट है, उसी पॉइंट को आइंस्टाइन ने भगवान कहा था। और वही ब्रह्मा कुमारी संस्था का संस्थापक है जिसे हम मेडिटेशन में याद करते हैं, और ध्यान के माध्यम से बुद्धि के नेत्र से मन बुद्धि से कनेक्ट होकर उन शक्तियों को हम अपने अंदर समाते हैं और अपने मनोबल को बढ़ाते हैं, और उन्हीं ऊर्जा को, उसी को वाइब्रेशन के रूप में, संकल्पों के रूप में हम जमीन, बीज और पेड़ पौधों को ट्रांसफर करते हैं, तो इसमें हमें आमूलाग्र बदल दिखाई दे रहे हैं। यहां पे आप देख रहे हो साधनों के साथ साधना का प्रयोग होना आवश्यक है। हम लोग इस भौतिकता की दुनिया में इस प्रकार से जी रहे हैं कि साधन हमारे लिए बहुत कुछ, हम उसको ऊंचा उठा के रखा है, परंतु साधनों के साथ जब हम साधना करते, ध्यान करते, आराधना करते हैं तो साधन हमारे लिए होता है। आज हम साधनों के लिए बने हैं। हमारे पास गाड़ी नहीं है तो हमारा जीवन रुक जाता है, मोबाइल नहीं तो जीवन रुक जाता है, मतलब साधनों के लिए हम जी रहे हैं, साधन हमारे लिए नहीं है। जब हम साधना करते हैं तो साधनों को यूज करते हुए हम साधन अपने लिए यूज करते हैं, साधना के लिए हम यूज नहीं होते हैं। इसीलिए साधन और साधना का बैलेंस करने के लिए परमात्मा की याद होना बहुत जरूरी है और अपने मनोबल को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। अब परमात्मा से हमें क्या मिलता है, एक तरफ आप देख रहे हो दोनों बातें हम बताएं, खेती में भौतिकता क्या है और आध्यात्मिकता क्या है, योग के प्रयोग की विधि बताई है, एक तरफ परमात्मा विच इज आउटसाइड द यूनिवर्स एक पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में स्थित है, उनके अंदर से जो निकलने वाली रेज है वो है शांति की है, प्रेम की है, आनंद की है, शक्ति की है, और उन्हीं शक्तियों को आप अपने अंदर समाकर एक खेती में बैठकर एक योगी कैसे उसको स्प्रेड कर रहा है और इसके क्या लाभ मिलता है ये भी दिखाया है यहाँ पे। हम लोग भौतिकता की ओर से तो ये सारी बातें यूज करते हैं, केवल भौतिकता माना सर्वस्व नहीं है। जिस आइंस्टाइन का नाम हमने लिया, उस आइंस्टाइन ने स्पष्ट लिखा है अपनी किताबों में, जिस समय अध्यात्म और विज्ञान का बैलेंस होगा उसी समय सभी समस्याओं का समाधान होगा। आज हम केवल विज्ञान को सर्वस्व मानते चल रहे, विज्ञान माना सर्वस्व नहीं और अध्यात्म माना भी सर्वस्व नहीं। आइंस्टाइन के कहे अनुसार हमें दोनों का बैलेंस करना जरूरी है, और हम योगी किसानों ने इन दोनों बातों का बैलेंस किया है, इसलिए हमें पूरी सफलता मिल रही है। यहां पे हमने भौतिकता की ओर से और नेचुरल फार्मिंग में, प्राकृतिक खेती में, सबसे पहले तो हमारे खेती में से जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको हम आच्छादित करते हैं या जमीन के अंदर मिला देते हैं। दूसरी बात है हम ग्रीन मैन्योर को यूज करते हैं, हरी खाद जिसे कहते हैं, वो अलग विधि है। इसके लिए हम किसानों को कम से कम 6 घंटे की ट्रेनिंग देते हैं कि हम प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए घर में ही खाद कैसे तैयार करें। तीसरी बात है हम बेसल डोस बनाते हैं, प्राकृतिक डीएपी बनाते हैं, प्राकृतिक यूरिया बनाते हैं। पर्यावरण के लिए हम लोग जैव विविधता और कुछ पेड़ पौधों का इस्तेमाल करते हैं, उसका भी लाइव वीडियो हम आपको दिखाएंगे कि हमने मेरे खेती में कैसे किया है। ना केवल ब्रह्मा कुमारी संस्था बता रहे, ना केवल ब्रह्मा कुमारी संस्था किसी को उपदेश कर रही है, ब्रह्मा कुमारी संस्था ने मेरे जैसे हजारों को किसानों के खेती में करके दिखाया है, और उन्हीं में से एक किसान हम है। तो हमने अपने खेती में क्या किया है वो आपको बताएंगे। सबसे पहले इस खेती में हमने ऊपर दिखाया एक चित्र, हम लोग जमीन को वाइब्रेट करते हैं। आप लोग कहेंगे जमीन को वाइब्रेशन देने से क्या लाभ मिलने वाला है। आज विज्ञान का युग चल रहा है, एक समय था किसान अनपढ़ था परंतु वो एक परफेक्ट साइंटिस्ट था। इसीलिए साइंटिस्ट था क्योंकि वो हर बात में पहले भगवान की याद में, हर बात की शुरुआत, हर कर्म की शुरुआत परमात्मा की याद में करता था। बीज बुवाई से पहले वो बीज की पूजा करता था, हल चलाने से पहले हल की पूजा करता था, गाय की पूजा करता था, गोबर की पूजा करता था, फसल कटाई से पहले फसल की पूजा करता था, फिर अपने हर कार्य की शुरुआत करता था। उनको इसके पीछे क्या विज्ञान है पता नहीं था, परंतु वो हर विधि विधिवत करता था, इसीलिए वो एक परफेक्ट साइंटिस्ट था। आज हम लोग आपको वैज्ञानिक तरीके से बताना चाहते हैं, परंतु उन लोगों ने आज तक ये किया हुआ है। अब देखो, पहले ही चित्र में बताया है कि एक किसान जमीन के ऊपर बैठ के जमीन को चार्ज कर रहा है, परमात्मा की शक्तियों को लेके उस जमीन के अंदर प्रवाहित कर रहा है। 1922 की बात है, आज भारत सहित करीब 65 कंट्रीज में अग्निहोत्रा पद्धति का इस्तेमाल हो रहा है, होमाथेरेपी सिस्टम कहते हैं उसे। इस होमाथेरेपी सिस्टम का जो जन्मदाता है वो डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर है। रुडोल्फ स्टेनर ने 1922 में इस बात को स्पष्ट कहा है, अगर आपको नेचुरल फार्मिंग में उत्पादन को बढ़ाना है तो ब्रह्मांड की शक्ति का इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है, और ब्रह्मांड की शक्ति का उपयोग करने का सही तरीका अगर कोई है वो है भारत का प्राचीन योग जो ब्रह्मा कुमारीज में सिखाया जा रहा है। मेडिटेशन में हम लोग उस ब्रह्मांड की शक्ति जो है शांति है प्रेम है आनंद है महसूसता के साथ अनुभव के साथ हम जमीन को चार्ज करते हैं तो जमीन के अंदर की जो ऊर्जा है वो कार्यक्षम होती है, जमीन के अंदर जो बैक्टीरिया है उनको कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, बहुत कुछ बेनिफिट्स उसमें है। बट वो कब बढ़ती है, जब हम भौतिकता को यूज करते हैं। बिना आज सुबह अगर आपको नाश्ता बिना खिलाए यहां के बैठ जाओ ऐसे कहते थे तो जितनी संख्या अभी उपस्थित है उसमें कई गुना कम हो सकती थी, क्योंकि पहले हमारे मराठी में कहते हैं आदि विठोबा मग पोठोबा, मतलब पहले पेट की पूजा होती है फिर भगवान की पूजा होती है। यहां पे भी अगर धरती माँ को हम कुछ नहीं खिलाएंगे और केवल योग करेंगे तो संभव नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया का जो जमीन के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी उसका रहने का स्थान जो है ऑर्गेनिक कार्बन है, उस कार्बन को बढ़ाने के लिए जमीन की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए हम सारी चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसका इस्तेमाल करने के बाद आज मेरी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन जो है 1.6 है, हमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। वहां पे जब शुरू में आप 0.3 ऑर्गेनिक कर्व था उसको बनाने के लिए हमें 2 साल लग गए, और आज हम कम खर्चे वाली खेती कर रहे हैं। शुरुआत में अगर कोई कहता है ये कम खर्चे वाली खेती है तो मैं किसान इस बात को स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि पहले 2 साल तो उस जमीन का ऑर्गेनिक कर्व बढ़ाने के लिए हमें बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, और जमीन की ताकत कम होती है तो पौधे कमजोर बनते हैं, पौधे कमजोर होते हैं पेस्ट डिसीज का प्रादुर्भाव बढ़ता है, उस सबको कंट्रोल करना पड़ता है, इसीलिए किसानों का खर्चा बढ़ता है। एक बार जमीन शक्तिशाली बनती है तो पौधे तुरंत शक्तिशाली बनते हैं, वो खुद की सुरक्षा खुद कर पाते हैं, इसीलिए जमीन को चार्ज करना जरूरी है। किसान पहले साल में एक बार जमीन की पूजा करता था, उसकी भावना थी कि ये धरती माँ मेरे लिए सर्दी में गर्मी में धूप में एक जगह खड़ा होकर अनाज का निर्माण कर रही है, मेरा पेट भरने के लिए इतना कष्ट कर रही है, तो साल में एक बार तो कम से कम उसको धन्यवाद बोलना जरूरी है, इसीलिए वो पूजा करता था, अपना भावना को अर्पित करता था। हम लोग पूजा नहीं करते हैं परंतु धरती माँ को जहर खिलाने के बजाय रोज उसको अच्छी खाद खिलाते हैं, रोज उसको धन्यवाद मानते हैं और ब्रह्मांड की शक्ति से उसको चार्ज करते हैं। दूसरी बात है जो अपने बीज होते हैं, बीज को भी पहले किसान चार्ज करता था, पूजा करता था। हम लोग मेडिटेशन में बीज को सामने रखते हैं, स्वयं को आत्मा समझ के उस परमात्मा की शक्ति अपने अंदर लेते हैं और बुद्धि के नेत्र से इस बात को महसूस करते हैं कि परमात्मा की लाल सुनहरी करने इस बीज के अंदर उतर रही है और एक एक बीज चमकीला बनता जा रहा है, और उसी समय एक अच्छा संकल्प करते हैं कि आपको निरोगी और शक्तिशाली प्लांट्स का निर्माण करना है। किसको कहा मैंने? बीज को कहा। आपको लगेगा क्या बीज इसको स्वीकार करेगा, कर सकता है? 101% कर सकता है। हम लोग केवल भौतिकता की ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसको बायोकल्चर लगाओ, जीवाणु लगाओ, या तो जो केमिकल वाली है उसको लगाओ, परंतु भौतिकता के साथ मन की ऊर्जा होना बहुत जरूरी है। इसके भी बहुत सारे रिसर्च हो गए हैं, कई सारे ऊर्जा के साथ उस बीज को चार्ज करने के प्रयोग चल रहे हैं। हम लोग 2011 में पूसा इंस्टीट्यूट में गए थे दिल्ली में, वहां पे हमने देखा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नाम की मशीन उन्होंने तैयार की थी। उस मशीन के अंदर बीज डाल के उसको हाथ से रोटेट करते हैं तो उस मैग्नेटिक वेव से वो बीज चार्ज होते हैं और 10% जर्मिनेशन पावर उस बीज की बढ़ गई है। ये तो एक भौतिक एनर्जी है, परंतु ये अभौतिक एनर्जी जो है मेडिटेशन, इसने जब हमने चार्ज किया, कल आपने डॉक्टर सुनीता पांडे जी का अनुभव सुना, गोविंद वल्लभ पंत पंतनगर यूनिवर्सिटी में 2 साल के लिए एमएससी के 2 लड़कियों ने इस पर थीसिस भी लिखे, जिसका रिसर्च डाटा इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो चुका है, जिसमें करीब 8% जर्मिनेशन पावर केवल मेडिटेशन से बढ़ गई है। उसका इस विस्तार बताने जितना टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि टाइम लिमिट है हमारे सामने और वक्ताएं बहुत है। बाद में कभी बता सकते हैं, परंतु मेडिटेशन से जर्मिनेशन पावर बढ़ गई है। अभी आप बीटी बीज के बारे में सोचते हैं, क्या है बीटी बीज, बीटी बीज में किस प्रकार से उन्होंने अंदर से परिवर्तन, बिना बीज को काटे अंदर में ऐसा परिवर्तन किया है जिस कारण बीज का पौधा बनते ही उसमें जहर आ जाता है और उसमें कोई कीड़े नहीं आते हैं। अगर विज्ञान को यह संभव है तो क्यों ना हम अपने विचारों से इस प्रकार से उस बीज के अंदर ऐसी प्योर एनर्जी भरे ताकि बीज के ऊपर कोई भी कीड़े ना आए, बीज का पौधा जो है वो निरोगी शक्तिशाली होकर बढ़े। हम सब जानते हैं विज्ञान को साधनों को, परंतु चिंतन हमारा कमी है। अगर कोई रिन स्टोन होता है तो रिन स्टोन के भी आज लेजर बीम के माध्यम से विदाउट ऑपरेशन उसको कट किया जाता है और विदाउट ऑपरेशन वो यूरिन स्टोन खत्म किया जाता है। कई सारे ऐसे साधन निकले हैं, परंतु मेडिटेशन मन के विचार एक ऐसी शक्ति है जिससे हम बीज को चार्ज करते हैं और इसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। दो फायदे, एक तो बीज चार्ज होता है, दूसरा मेडिटेशन से हमारा मनोबल बढ़ता है। किसानों के जीवन की सबसे बड़ी समस्या अगर क्या है तो है वो दिन प्रतिदिन मन से कमजोर होता जा रहा है, उनके जीवन में उसका उत्पादन का खर्चा बढ़ता जा रहा है, प्रकृति का सहयोग नहीं मिल रहा है, लेबर नहीं मिल रहे हैं और सही दाम नहीं मिल रहा है। चार मुख्य समस्याएं उनके जीवन में है और इन समस्याओं का समाधान जहां मिलता है वहां वो अपनी जी जान लगा के खेती करता है, परंतु इन समस्याओं का समाधान करने के लिए आज उनको सब पता है केमिकल से क्या नुकसान होने वाला है। जो अन्नदाता मैं हूं, मैं दुनिया को जहर खिला रहा हूं, ये भी वो जानता है, पर उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं है। उनका मन इतना कमजोर बन गया है, वो सोचता है कि अगर हम सभी प्राकृतिक खेती करेंगे तो हमारा उत्पादन कम हो जाएगा, मेरा घर कैसे चलाएगा, मैं परिवार को कैसे चलाऊं। परंतु उनको ये पता नहीं है कि जितना काम ये भौतिक फर्टिलाइजर कर रहा है उतना ये आध्यात्मिक फर्टिलाइजर भी काम कर रहा है। कैसे कर रहा है आपके सोचने की बात है, स्टेज से इतना विश्लेषण नहीं हो पाएगा, परंतु आप चिंतन करो, आज कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर भी क्या कहते हैं, 70% बीमारियां मानसिक बीमारियां हैं। मानसिक बीमारियों का मतलब क्या होता है, मन की कमजोरी के कारण बढ़ने वाली बीमारी है उसको मानसिक बीमारी कहते हैं। अब मन कमजोर जो बन रहा है उसको शक्तिशाली बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, भारत के प्राचीन योग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इसके सामने। मेडिटेशन से ही मनोबल बढ़ता है, जब मनोबल बढ़ता है तब वो शरीर की बीमारियों को कंट्रोल करने में सक्षम बनता है। इसी प्रकार खेती में भी हम ये समस्या को ठीक करने के लिए जब हम मेडिटेशन करते हैं तो अपना खुद का मनोबल बढ़ता है और जिसका मनोबल बढ़ता है वही सत्य को स्वीकार करता है। जो मन से कमजोर होते हैं वो कभी सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, इसलिए सबसे पहले आवश्यक है मेडिटेशन। दूसरी बात है बीच में जो लिखा है वो पौधों को भी हम वाइब्रेट करते हैं। वहां पे लिखा है खेती शास्त्र का पहला किताब अगर कोई है तो उसमें लाखो वस्की ने अपने उस किताब में लिखा है, अगर आप ब्रह्मांड की शक्ति से प्लांट्स को चार्ज करते हैं, झेंडा बेचता उस किताब का नाम है, तो पौधों के अंदर की एनर्जी कैसे कार्यक्षम होती है, पौधों की ग्रोथ पावर कैसे बढ़ती है, पौधों की ह्यूमिनिटी पावर कैसे बढ़ती है, वो सब 19वीं सदी की शुरुआत में रिसर्च हुई हो चुकी बातें हैं। आज हम कहते हैं क्या प्रूफ है इसके लिए, मैं कहता हूं आज का जो विज्ञान है उन्होंने जो बातें की है उसके लिए क्या प्रूफ है। हम कहते हैं जमीन के अंदर राइजोबियम जीवाणु होते हैं, एजोटोबैक्टर कहते हैं, पीएसबी कल्चर कहते हैं, कौन है वैज्ञानिक जिन्होंने इसका नाम रखा है। बस जैसे आज इस दुनिया में इंसान काम कर रहा है, सब मनुष्य है, परंतु कोई लोहार है, कोई चांबार है, कोई कुंभार है, कर्मों के आधार से उनको नाम दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से जो जमीन के अंदर बैक्टीरिया काम कर रहे हैं वो भी अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई जमीन से फॉस्फरस अपटेक करके पौधों को दे रहा है, कोई हवा से नाइट्रोजन लेके पौधों को दे रहा है, उन्होंने काम बांट के लिया, हमने उनका नाम अलग रख दिया। ठीक इसी प्रकार यहां पे भी जो खेती में हम अलग अलग नामों से किसान मूंझता जा रहा है, ये करो वो करो ऐसे करो वैसे करो, हम लोग कहते हैं केवल देसी गाय के गोबर को यूज करो। जैसे आपका जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ती जाती है वहां नेचुरली सभी प्रकार के जीवाणु आ जाते हैं और वो अपना अपना काम बांट के करने लगते हैं। स्पेशली उनको ये बताने की जरूरत नहीं कि आप राइजोबियम की यूज करो, पीएसबी को यूज करो, बहुत चिंतन की बात है, चिंतन करो इस पर। हमारे यहाँ कोल्हापुर के शिरोल तहसील में कैंसर की बीमारियां बहुत बढ़ रही है। कैंसर एक दिन में बढ़ने वाली बीमारी नहीं है। जैसे हम अशुद्ध अनाज, अशुद्ध आहार का स्वीकार करते हैं, अशुद्ध अनाज लेते हैं तो शरीर के अंदर कुछ ऐसी ऊर्जा, अशुद्ध ऊर्जा जमा होती है तो कुछ समय बाद वो किसी एक शरीर के पार्ट को पकड़ के वहां बीमारी दिखाई देते हैं, हम उसको कैंसर कहते हैं। वो कहां से आते हैं, कोई जानवर मरता है तो उसके अंदर कीड़े कहां से आते हैं, वो नेचुरली पैदा होते हैं। ठीक इसी प्रकार जब जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है तो वहां पौधों की ग्रोथ के लिए आवश्यक जो भी बैक्टीरिया होते हैं, जो भी जीवाणु होते हैं, केंचुए होते हैं, नेचुरली भगवान ने उसको जन्म दिया है, वो अभी रूट गए हमसे, जमीन के अंदर जाके सुप्तावस्था में बैठे हैं। जब जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है वो नेचुरली ऊपर आता है, अपना काम करने लगते हैं। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो देखिए कितनी भी बंजर वाली जमीन हो आप केवल 1 लीटर जो हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर हो बनाइए और 1 चौरस फुट एरिया में डाल दो उसमें और उसके ऊपर कुछ 5-6 इंच का मल्चिंग कर दो और 8 दिन बाद जाके वहां देखो कितने सारे आपको बैक्टीरिया मिलेंगे और वहां अर्थवर्म्स भी दिखाई देंगे आपको। किसने लाके छोड़ा उस जमीन के अंदर वो अर्थवर्म्स को? भगवान की रचना कुछ अलग है। मनुष्य बुद्धिमान होते हुए भी हमने प्रकृति के कई सारे नियमों का उल्लंघन किया है, इसीलिए आज की समस्या बढ़ रही है। अगर इन समस्याओं को मिटाना है तो फिर से हमें प्राकृतिक खेती की ओर मुड़ना है। मैं अभी अपनी खेती का एक वीडियो दिखाऊंगा आपको कि कैसे हमने प्राकृतिक खेती की है। मैंने शुरू में भी कहा ब्रह्मा कुमारी मंच कहने वाला मंच ने इन्होंने करके दिखाया और हजारों किसानों को तैयार किया है। देख लो खेती, इसमें मेड़ के ऊपर कुछ वृक्ष लगाए हुए हैं जो हमने पर्यावरण की सुरक्षा कर रहे हैं। खेती में भी देख रहे हो हमारे 34 साल के गन्ने की क्रॉप है, उसमें हमने कैसे गन्ने के पत्ते का मल्चिंग किया है और बीच में एक रो जो है उसमें हमने ग्रीन मैन्यूर भी किया है, ग्रीन मैन्यूर का भी मल्चिंग किया है, मेड़ पर वृक्ष भी लगाए, इसमें पर्यावरण सुरक्षा भी हो रहे हैं और जमीन के अंदर की जो बायोडायवर्सिटी है उसको भी हमने बचा के रहा। कल जो लेक्चर आपने सुना जल जन अभियान, पानी को बचाओ, अगर हम मल्चिंग करते हैं तो उसमें पानी की बचत कितनी परसेंटेज में होती है पता नहीं है। जब जमीन का अभी मेरे जमीन का ऑर्गेनिक 1.6 है। अमेरिका के एक कृषि संस्था ने इस बात को स्पष्ट कहा है कि जमीन का ऑर्गेनिक कब 1% से आगे चला जाता है तो 1 एकड़ जमीन में 1,13,000 लीटर पानी का स्टोरेज हो जाता है। अगर प्राकृतिक रूप से इतना स्टोरेज जमीन में अंदर होता है तो हमें हमारा फर्ज है कि सबसे पहले जमीन की उर्वरक शक्ति को बढ़ाना और उसको मल्चिंग से धरती माँ को एक अच्छी साड़ी पहनना जरूरी है, जो हम किसान प्रैक्टिकल में कर रहे हैं। मल्चिंग से कई सारी बेनिफिट्स है। इसमें कहते हैं हम खरपतवार बहुत आते हैं, हमारे खेती में भी खरपतवार आती है पर केवल 20% आती है, 80% खरपतवार हमने यहां ही कंट्रोल कर दिया है। दूसरी बात, इसके नीचे बहुत सारे केंचुए हैं जो केंचुए खरपतवार के बीज को खा के खत्म करते हैं। इसमें इतने सारे जीवाणु हैं, वो जीवाणु उस बीज को कंपोस्ट करके खत्म कर देते हैं। ये प्राकृतिक खेती का ये वरदान है कि प्रकृति के जो भी लेबर हमें मिले हैं इसको फ्री ऑफ चार्ज में हम लोग यूज कर रहे हैं। इस एक तरफ आप देखें हमें अपनी खेती में बायोडायवर्सिटी को कैसे पालना की है। यहां पे मल्चिंग का दिख रहा है परंतु अभी बायोडायवर्सिटी भी हमने खेती की है। जैव विविधता के लिए मैंने अपने खेती में 30,000 स्क्वायर फुट एरिया में पूरा एक जंगल बना दिया है। उसमें सारे फलों के पौधे हैं, जंगली पौधे हुए बड़ का है, पीपल का है, नीम का है, करंज का है। विदाउट बायोडायवर्सिटी ऑर्गेनिक फार्मिंग का नाम भी नहीं ले सकते आप लोग। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको सक्सेस करनी है, उत्पादन को बढ़ाना है, तो जैव विविधता को बढ़ाना बहुत जरूरी है। जैव विविधता का बहुत बड़ा रोल है। और इसमें कैसे रोल है तो आप इसमें देख सकते हैं, थोड़ा सा आगे लेके दिखाई हो एग्रो फॉरेस्टी। इसमें कैसे मधुमक्खियों ने घोंसला बना दिया एक एक पेड़ के नीचे। अभी मधुमक्खियों की संख्या कम हो गई इसलिए हम लोग मधुमक्खी की पालना कर रहे हैं। जमीन के अंदर केमिकल फर्टिलाइजर का गैर इस्तेमाल किया तो वहां केंचुए की संख्या कम हो गई, हमें केंचुए की पालना करनी पड़ रही है। दूसरी बात, जो भी बायोडायवर्सिटी में पंछी प्राणी है वो सब कम होते जा रहे हैं। कहीं आगे चल के हमारे ऊपर बहुत सारा नाजुक समय आने वाला है। अभी 2-3 साल पहले गवर्नमेंट ने किसान सशक्तिकरण अभियान चलाया, उसके बाद मृदा सशक्तिकरण अभियान चलाया, अभी इस बारी जल सशक्तिकरण अभियान चल रहा है। क्या हर साल हम यही अभियान चलाते रहेंगे? यौगिक खेती के माध्यम से सभी समस्याओं का समाधान हमने करके दिखाया है। यहां पे भी जल व्यवस्थापन का भी हमने अभियान चलाया, मृदा स्वास्थ्य का भी हमने देखभाल किया है और जो बायोडायवर्सिटी उसका भी पालना है। मधुमक्खियां भी हैं तो हमारे खेत में चिड़िया भी है। अब चिड़ियों को भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। हम लोग कहते हैं पेस्ट कंट्रोल नहीं हो रहा है, डिसीज कंट्रोल नहीं हो रहा है। अगर पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम कितनी भी दुनिया की दवाई एक तरफ यूज करें संभव नहीं है। परंतु एक सत्य अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूं। चाइना के एक कहानी है, 1957 की बात है। उस समय चीन को विश्व में को सबसे आगे ले जाने के लिए, टॉप में बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने देश को कहां कहां बचत कर सकते हैं, तो उन्होंने अनाज खाने वाली कुछ चिड़ियों को देखा। उन्होंने कहा कि एक चिड़िया अगर मेरे देश का एक साल में 4.5 kg अनाज को खत्म करती है तो मेरे देश की सारी चिड़ियों को खत्म करना चाहिए। चाइना के अध्यक्ष ने वो ऑर्डिनेंस निकाला, एक साल में पूरी चिड़ियों को खत्म कर दिया, 1958 में खत्म कर दिया। 1959 में चीन में जो भी क्रॉप थी उसमें इतनी कीड़े आ गए, उस कीड़ों को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया उनको। फिर 1960 में 3 करोड़ आबादी भूखे मर गई। क्यों भूखे मर गई? क्योंकि अनाज सारा खत्म हो गया खेती में। फिर से उन्होंने भारत के सामने और मॉरिशस के सामने भीख मांगी कि हमको चिड़िया दे दो, और भारत से और मॉरिशस से चिड़िया खरीद के उन्होंने अपने देश की कीट कंट्रोल को बचाया था। क्या हम आगे चल के चिड़ियों का अभियान निकालेंगे? क्या अभी से हम अपनी खेती में पेड़ पौधे नहीं लगा सकते हैं? ये सब अध्यात्म सीखता है। इसमें ब्रह्मा कुमारी का रोल क्या है? सारी भौतिकता की बात ही नहीं है। मैंने अभी एक बात कही थी, सत्य को स्वीकार करने के लिए मनोबल चाहिए और मनोबल को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन चाहिए। जिनका मनोबल बढ़ता है वही ये सब बातें कर सकता है। क्या आज हम फिर से उल्लू को पालना करेंगे? अब इसराइल से प्रगत कंट्रीज में उल्लू की पालना कर रहे, चूहे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। फिर से देखो इसराइल का एक रिसर्च में, अब आज इसराइल फिर से इस बात पे आ गई जगदीश चंद्र बोस जी के रिसर्च पे। उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, वो नाम मैं भूल गया, पर उसमें उन्होंने लिखा है कि कैसे पेड़ पौधे अपने विचारों को समझते हैं और वो अपनी भावनाओं को कैसे प्रकट करते हैं, वो किस प्रकार से एक दूसरे को सहयोगी बनते हैं, इस पर भी अभी इसराइल के साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। तो क्या वो लोग बताएंगे तब हम विदेश को फॉलो करेंगे? भगवान खुद इस धरा पे आपके हमको ये बता रहा है। एक प्रोजेक्ट ब्रह्मा कुमारीज का नहीं है, ब्रह्मा कुमारीज केवल निमित्त मात्र बन के आपको परमात्मा के आदेश को फैलाने का काम कर रही है। काम परमात्मा का है। ये परमात्मा अभी क्यों आता है ये भी मैं आपको बताऊं, कलयुग के अंत में जब हर बात में टू मच हो जाता है, कोई भी व्यक्ति इसको रोक नहीं पाता है, तब परमात्मा खुद खुदा इस धरा पे आके वो मनुष्य के जीवन में ऐसा परिवर्तन करता है जिस परिवर्तन के द्वारा वो विश्व परिवर्तन करना चाहता है। अभी वो समय आ रहा है परिवर्तन चक्र का। यहाँ पे आप एक सृष्टि चक्र दे रहे हो, इस सृष्टि चक्र में सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग दिखाया है। आप सबको पूछेंगे कौन सा युग है, तो आप कहेंगे कलयुग है, पर कलयुग के द्वारा क्या होने वाला है? आप सब बाहर की न्यूज देखते हो, विदेशों में क्या चल रहा है, भय के कारण एक दूसरे को सुरक्षित रखने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, स्वयं की सिक्योरिटी के लिए दूसरे को खत्म करने की योजना बना रहे हैं। अब ऐसी हालत में कलयुग के अंतिम चरण में परमात्मा ने कहा है कि भारत अविनाशी खंड है, भारत का कोई विनाश नहीं कर सकता है, पर भारत को अपने अंदर, भारत के जो व्यक्ति है उनको अपने कर्मों के द्वारा भारत का परिवर्तन करना आवश्यक है। इसलिए उसमें कहा है अगर इस समय कलयुग के अंत में अगर किसी चीज की कमी है तो सबसे कमी है वो है सच्चे प्यार की कमी है, और उस प्यार की कमी के कारण कई सारी समस्याएं बढ़ रही है। हमारा प्रकृति के साथ प्यार नहीं रहा है। जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर नाम का एक वैज्ञानिक होके गया, अगर व्यक्ति प्यार भरा होता है, प्रकृति से प्यार करता है, तो कैसे पेड़ पौधे उसको रिस्पांस देते हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है। आज हम अपने जीवन में आलू है, मूंगफली है, सब कुछ अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका रिसर्च किसने किया ये हमें नहीं पता है, इसकी वैरायटी हमने निकाल दी, पर इसका सारा श्रेय कार्वर जी को जाता है। कार्वर के उस समय 1926 की बात है, उस समय उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, केवल उन्होंने पौधों से बात करके पूछा था कि क्या आपका जन्म केवल सुअर के लिए है, आप मनुष्य के लिए कुछ नहीं दे सकते हैं, और सब सामने से वो पौधा उसको बता रहा है कि हाँ आप भी मुझे अपने जीवन में यूज कर सकते हैं। अब कैसे यूज करना है, एक व्यक्ति पौधे से पूछ रहा है और पौधा उनको बता रहा है। फिर उन्होंने कई सारे प्रोडक्ट्स का निर्माण किया और लोगों को जब खाने के दिया तो लोग इसको स्वीकार नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये सुअर का खाना था जंगल में, इसको कौन खाएगा? 5 मिनट देरी। तो इसमें क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने सारे प्रोडक्ट ट्रक भर के बॉर्डर पे लड़ने वाले जवानों के लिए भेजा, और उन जवानों ने इससे अपनी भूख मिटा के सेकंड वर्ल्ड वॉर में जीत पाई थी। उसके बाद है अभी लेटेस्ट रिसर्च है, थॉमस तामहम उनका नाम है, चीन के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने हमारे सोच का असर पौधों के ऊपर कैसे होता है ये बताया है। समाज के कुछ ऐसे लोगों के उन्होंने सात्विक विचारों से तैयार हुआ अनाज खिलाया, तो उस एक दूसरे से झगड़ा करने वाले समाज भी कैसे एक संगठित हो गया, और कुछ लोग ऐसे मिलजुल के रहते थे, उन्होंने ऐसे गलत विचारों से जो अनाज निर्माण किया वो अनाज जब उसको खाने को दिया तब वो लोग मिलजुल के रहने वाले लोग भी आपस में झगड़ा करने लगे। तीसरी लास्ट में जो बात है कल आपको सिद्ध करके बताया, पानी के ऊपर के एक्सपेरिमेंट है, उस पर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अब मैं आता हूं कर्मों की गहन गति के ऊपर, परमात्मा क्या सिखा रहा है, क्यों करना है, ये कौन सा समय चल रहा है, अभी नहीं तो कभी नहीं होने वाला है। अब यहां पे लिखा है एक तरफ कर्मों की गति लिखा है, परमात्मा कहते हैं पहले अपने मन में शुद्ध विचारों का बीज बुआई करो, तभी आप योगिक खेती में शुद्ध बीज की बुआई कर सकते हैं। मन में कुछ ईर्ष्या, घृणा, नफरत है और हम योगिक खेती करना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है, और इस मन के अंदर की ईर्ष्या, घृणा, नफरत को मिटाने के लिए मेडिटेशन की बहुत आवश्यकता है। दूसरी है हम लोग खेत को संदेश देते हैं, सूर्य प्रकाश के बिना खेती नहीं उगती है। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी आध्यात्मिक ज्ञान सूर्य है जो परमात्मा, उनके साथ जब तक हम कनेक्ट नहीं होते तो हमारे अंदर परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। और कर्म क्यों, ये क्यों करना चाहिए, आने वाला समय क्या है, बीच में जो समय आता तब किसने बचाया हमको, जो कोरोना का पीरियड आया था उस टाइम समाज में कई सारी विकृतियां निर्माण हो रही थी, उस टाइम हम सब भगवान के ऊपर भरोसा करते थे और उस टाइम हमने बहुत कुछ प्लान किया था, पर वो आज प्लान वही की वही रह गया। अब परमात्मा फिर से इशारा दे रहे कि आप इस श्रेष्ठ कर्म को अपने जीवन में अमल में लाइए। यहाँ पे कर्म, अगर हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो हमारे साथ क्या आने वाला है, यहाँ पे लिखा है अब धन की मुद्रा नहीं दुआओं की मुद्रा आएगी। जब कोरोना काल में कई सारे मरीजों को हमने देखा जेब में 10-10 लाख रुपए लेके घूम रहे थे, पर वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रही थी, क्योंकि कर्म जो दुआ रूपी मुद्रा थी उनके पास नहीं थी। जिनके पास दुआ थी वो किसी पेड़ के नीचे बैठ के भी अपने कोरोना की बीमारी को ठीक किया था उन्होंने। आने वाला समय भी ऐसा ही कुछ है, हम लोग बहुत गड़बड़ कर रहे, बहुत खिलवाड़ कर रहे प्रकृति के साथ। तो ऐसे परिस्थिति में अगर हमको स्वयं को बचाना है तो हमें अपने श्रेष्ठ कर्मों के साथ जो दुआओं की मुद्रा है उसको जमा करना जरूरी है, क्योंकि अब सतयुग आने वाला है, सतयुग में एंट्री करें। यदि विदेश में भी जाना होता है तो हमें अपनी करेंसी को चेंज करना पड़ता है। यहां पे भी धन की मुद्रा काम नहीं करेगी। जिनके पास दुआ होगी तो दवा जरूर काम करेगी। और ये खेती अगर आपको करना है, किसी से करवाना है, तो इसके 6-7 घंटे का ट्रेनिंग होता है। भले आज आप अपने पास खेती हो न हो, करना चाहे न चाहे, परंतु आपके पास खेती न भी हो तो भी आप बहुत दुआ जमा कर सकते हैं। यहां से जाने के बाद आप किसी किसानों को इसकी प्रेरणा दे दो, ट्रेनिंग दे दो। उनके पास जो भी निकलता है आप उसको खरीद के आप उसको खाने के लिए शुरुआत कर दो। हम कहते हैं कि हमारा कोई रोल नहीं है, परंतु आज क्या खा रहे हो आपको पता नहीं। किसान क्या करता है, जो खुद नहीं खाता है वो दूसरों को खिला रहा है। हम कोल्हापुर से आए, उस खेती में जो फ्लावर उगता है हम खुद नहीं खाते, क्योंकि उसमें ऐसी जहरीली दवाई डालते हैं किसान, तो वो सारा एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर के राज्यों में भेज देते हैं। अगर वही आज अनाज खाओगे तो आपकी शरीर की क्या हालत होगी सोच लो। इसीलिए आज ऐसी प्रेरणा आप किसानों को दे दो और वही अनाज आप खरीद के खाने के लिए शुरुआत करेंगे और किसानों को ऐसी प्रेरणा देंगे तो आने वाले समय के लिए आप भी दुआ के साथ बहुत कुछ जमा कर सकते हैं, अपनी हेल्थ की भी सिक्योरिटी दे सकते हैं और भविष्य के लिए भी एक नई दिशा ले सकते हैं। आप ऐसी आत्माएं हो जो भगवान ने आपको दुनिया में भगवान को ढूंढ रहे हैं और यहां भगवान ने आपको ढूंढ को इकट्ठा किया है। इसलिए ढूंढ को इकट्ठा किया है कि आपके ऊपर उनका इतना भरोसा है कि आप उस पूरे विश्व का नक्शा बदल सकते हैं। किसान अगर जीवन में परिवर्तन करेगा तो दुनिया की सारी समस्या ठीक करेगा। दुनिया में इतने कोर्ट के मामले बढ़ रहे हैं, वो भी क्यों? मन विकारी हो गया इसलिए मुकदमे बढ़ते जा रहे हैं। मन शरीर में अशुद्धि आ गई, शरीर की बीमारी बढ़ रही है। जहां डॉक्टर इलाज नहीं करता है वहां किसान का शुद्ध सात्विक अन्न इलाज करेगा। हम जब खेती में फसल लास्ट स्टेज में होते तो एक संकल्प करते हैं, ये अनाज जो भी खाएगा उसका तन तंदुरुस्त रहेगा और मन शक्तिशाली रहेगा। ऐसी प्रेयर के साथ हम लोग मेडिटेशन करते हैं, इसलिए अनाज इतना सात्विकता के साथ, पौष्टिकता के साथ सात्विक भी है। तो ऐसे अनाज के निर्माण के लिए आप सभी निमित्त बन सकते हैं और नई दुनिया को बनाने के लिए, विश्व का नक्शा बदलने के लिए निमित्त बन सकते हैं और आप बनेंगे, इसे आशा रखते हुए ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद। हम लास्ट में करें, सेशन के अंत में क्वेश्चन आंसर रखते हैं, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद बाला साहब भाई जी। अगर आपकी बातों को मैं संजोऊं तो यहां बात है विश्वास की, यहां बात है प्रयोग करके देखने की, यहां बात है प्रकृति से प्यार करने की, यहां बात है आत्मबल से प्रकृति को जीतने की, यहां बात है प्रकृति पति से दोस्ती कर प्रकृति जीत बनने की। अपने अनुभव से, अपने व्यवहारिक अनुभव से, अपने अनुभव युक्त वक्तव्य देकर हमारे सभी श्रोतागण के मन में विश्वास दिला दिया है कि प्रकृति हमारी आवाज को सुनती है, पेड़ पौधे हमारे विचारों को सुनते हैं और अपने संकल्पों से हम नई सृष्टि की रचना अवश्य कर सकते हैं। मंचासीन मेहमानों से अनुरोध है निर्धारित समय में ही अपना वक्तव्य पूरा करें। श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अभी हम आमंत्रित करती है भ्राता जितेंद्र कुमार जी। आप पलवल जिला परिषद के सीईओ हैं, आप आज के विषय में अपने विचार हमारे समक्ष रखें।
सर्वप्रथम मंच पर आसीन हमारे ब्रह्म कुमार दशरथ जी, ब्रह्म कुमार बालासो रुगे जी, भ्राता कुंभकर्ण राउत जी, ब्रह्म कुमारी जानकी बहन जी और सभा में मौजूद सभी पुण्य आत्माओं को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले तो मैं हमारी संस्था ब्रह्म कुमारी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने ऐसे एक गंभीर और अति आवश्यक विषय को चुनकर पूरे देश से बड़े बड़े हमारे वैज्ञानिक, हमारे अधिकारीगण एवं अन्य विद्वानगणों को यहां पर एकत्र किया। एक ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति को दिन में कम 3 बार प्रभावित करता है। हम डॉक्टर, इंजीनियर, वकील के पास तो कभी कभार जाते हैं, लेकिन किसान द्वारा उपजाई हुई फसल, उसके द्वारा उपजाया हुआ अन्न हम कम से कम दिन में 3 बार अवश्य ग्रहण करते हैं। हमें उसकी चिंता करना आवश्यक है। और आज हम यहां पर इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं तो यह दर्शाता है कि यह कितना गंभीर हो चुका है। आज का हमारा विषय है योगी कृषि में विज्ञान एवं अध्यात्म का समावेश। विज्ञान, आज हर तरफ विज्ञान की ही बात तो होती है। कोई भी बात हो हम कहेंगे कि इसका वैज्ञानिक तथ्य क्या है, वैज्ञानिक तर्क क्या है, हमें पहले विज्ञान समझाएं तभी हम इसको मानेंगे। अध्यात्म की भी बात होती है, धर्म की बात होती है, तो हम कहेंगे इसमें विज्ञान बताएं पहले तो हम इसको मानेंगे। लेकिन अध्यात्म को हम पीछे छोड़ गए। अध्यात्म को पीछे छोड़ने के कारण ही आज हमारी कृषि की यह दुर्दशा हो गई है। यदि हम प्राचीन काल में जाएं तो कृषि हेतु भारत में इसको कितना आध्यात्मिक महत्व दिया गया है वो हमें सिंधु सभ्यता के अवशेषों से पता चल जाता है। सिंधु सभ्यता में हमें जो अवशेष मिले वहां पर हमें गर्भ देवी की एक मूर्ति प्राप्त हुई है जो दिखाती है कि हम अपनी पृथ्वी को माता के समान मानते थे और उसकी पूजा करते थे, क्योंकि उसी के गर्भ से वो सब पैदा हो रहा है जो हमें जीवन देता है। फिर हम अथर्ववेदों में चले जाएं, हमारे वेदों में चले जाएं, वहां अथर्ववेद में ऐसे ऐसे मंत्र उच्चारण वहां पर किए गए, ऐसे श्लोक दिए गए हैं जो हमारी कृषि को आगे बढ़ाने में योगदान करते थे। भ्राता बालासु रूगे जी ने बहुत विस्तार से योगिक खेती के महत्व को बताया। कल की जो हमारी ट्रेनिंग सेंटर में कुछ भाइयों के प्रश्न थे कि कैसे योग से वो आगे बढ़ सकती है, ना केवल उन्होंने बताया बल्कि पिछले 22 सालों से वो या 17 सालों से जो बताया है वो कर दिखा रहे हैं। तो ये सिद्ध होता है कि योग के माध्यम से हम पौधों में भी जान फूंक सकते हैं। प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस जी ने अपना जो उनका यंत्र था क्रेस्कोग्राफ, उसके माध्यम से बताया उन्होंने एक पौधे को पॉइजन के अंदर डाल दिया और फिर अपनी मशीन के माध्यम से दिखाया कि कैसे वो पौधा भाग रहा है इधर उधर, उसमें मूवमेंट हो रही है और फिर धीरे धीरे वो मर जाता है। और सेम ऐसा ही जो है वो एनिमल्स के साथ होता है। तो पौधे हमें लगते हैं कि वो शायद बेजान हैं, वो हमारी भाषा समझ नहीं पाते हैं, ऐसा नहीं है। अफ्रीका में एक आइलैंड है, सोलोमन आइलैंड, वहां की ट्राइब में एक प्रथा है, वो जिस पौधे को उन्होंने काटना होता है तो वैसे नहीं काटते, वो पहले वो उसको मारते हैं। वो मारने का तरीका क्या है उनका, वो सभी जनजाति के लोग उस पौधे के उस पेड़ के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और उसे कोसते हैं, लगातार घंटों घंटों कोसते हैं, उसके बारे में अपशब्द बोलते हैं, नेगेटिव बातें बोलते हैं और वो पेड़ धीरे 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 मर जाता है। तो ये सिद्ध करता है कि पेड़ हमारी भावनाओं को समझते हैं, हमारी वाइब्रेशंस को कैच करते हैं, भले उन्हें हमारी भाषा नहीं आती है पर जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो कैसा भाव उत्पन्न कर रहे हैं वो भाव उस तक पहुंचता है। यही हमारी कृषि में है कि कृषि में यदि हम योग का प्रयोग करेंगे, उस तक वो भावनाएं पहुंचाएंगे तो अवश्य जो है वो हमारी भावनाओं को कैच करते हैं। भाई बालासु रूगे ने जो बताया यहां पर वो दिखा रहा है कि कैसे उनके पौधे जो है ज्यादा उत्पादन दे रहे थे, ज्यादा बीज जो है वो, जैसे बीजों को उन्होंने चार्ज किया तो वो बीजों ने उनकी वो भावनाओं को ग्रहण किया और ज्यादा उत्पादन उन्होंने पैदा किया। अन्य साइंटिस्ट भी इस पे कार्य कर रहे हैं, दुनिया भर में रिसर्चेस चल रही हैं। केवल विज्ञान विज्ञान के माध्यम से हमने इस कृषि को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, इस धरती को भी हमने पूरी तरह से प्रदूषित कर दिया। बिल्कुल ठीक बात है, विज्ञान की हमें आवश्यकता है, इसीलिए आज के विषय है, आज का जो विषय है उसमें यही है कि विज्ञान एवं अध्यात्म का समावेश हमारी योगी कृषि में। विज्ञान हमें अवश्य है लेकिन विज्ञान अध्यात्म के बिना लंगड़ा है। यदि अध्यात्म के बिना विज्ञान का हम प्रयोग करेंगे तो विज्ञान कहीं ना कहीं हमें विध्वंस, हमें विनाश की तरफ ले जाएगा। जो विज्ञान की तकनीकें हमने अपने लाभ के लिए बनाई, वही विज्ञान की तकनीकें आज पूरे विश्व को विध्वंस के ढेर पर खड़ा कर दिया है उन्होंने। यदि अध्यात्म साथ में होता तो विज्ञान की वो सभी तकनीकें आज मानव मात्र के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होती। इसी विज्ञान अध्यात्म के लिए बिना लंगड़ा है, यदि उसे अच्छे से चलाना है, तेजी से चलाना है, विकास की दर को हमें बढ़ाना है तो अध्यात्म का साथ हमें देना होगा। ये अध्यात्म अगर हम इसकी जाएं पीछे बैकग्राउंड पर कि कैसे कैसे क्यों हमें आवश्यकता पड़ गई कृषि में, कृषि तो हमारी बहुत अच्छी थी, हमारे किसान प्राकृतिक तरीके से कृषि करते थे, उत्पादन होता था, सभी का पेट भरता था, लेकिन हमें आवश्यकता क्यों पड़ गई? हमारी जनसंख्या, जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ी तो उन तौर तरीकों से उत्पादन उतना आवश्यक उतना प्रचुर मात्रा में नहीं था कि सभी तक पहुंच पाए वो। ठीक है, विज्ञान ने अपना खोज की, हमारे यहां भी हरित क्रांति आई, हरित क्रांति में हम लोगों ने नए बीजों का प्रयोग किया, हाई यील्ड वैरायटीज के सीड्स जो हैं उनका प्रयोग किया जो उत्पादन ज्यादा देते थे, लेकिन वो सीड्स ऐसे थे जिनको फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स ज्यादा पानी की आवश्यकता ये सब चीजों की आवश्यकता थी। उत्पादन तो हमारा बढ़ गया लेकिन जो हमने पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स जो हमने कीटनाशकों का प्रयोग किया वो कीटनाशक धीरे 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 हमारी धरती को खाने लगे। वो हमारी धरती हमारी पृथ्वी माता के लिए पॉइजन था, हमें नहीं पता था कि हम अपनी ही माता को पॉइजन दे रहे हैं, जहर दे रहे हैं अपना पेट भरने के लिए। आज उसके रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं। आज हमारे जो ग्राउंड वाटर है उसमें आर्सेनिक जा चुका है, उसमें लेड जा चुका है, उसमें ऐसे ऐसे तत्व जहरीले तत्व जा चुके हैं जो कि ना केवल ग्राउंड वाटर के माध्यम से बल्कि फसलों के माध्यम से भी हमारे शरीर में जा रहे हैं। कैंसर आज से 20-30 साल पहले बहुत विरला सुना करते थे, जिसको सुन लेते थे तो बहुत अचंभा होता था, अरे उसे कैंसर हो गया, लेकिन आज कैंसर के मरीज आम हो गए हैं। कैंसर ट्रेन तक चलानी पड़ गई पंजाब के अंदर क्योंकि ग्राउंड वाटर में इतना ज्यादा जहरीले तत्व पैदा हो चुके हैं, नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं, बीपी शुगर ये तो बिल्कुल एक जिसको कहते हैं कि हम लोग नॉर्मल कहने लग गए जबकि वो नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है, लेकिन इतने लोगों को हो गया कि वो नॉर्मल कहा जाने लगा उसे। उसका कारण भी कहीं ना कहीं हमारा खान पान। मैंने जैसे कहा डॉक्टर वकील इंजीनियर के पास तो कभी कभार जाते हैं, किसान की उपजाई हुई फसल को हम दिन में 3 बार अवश्य लेते हैं तो उसका हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। तो इसलिए आज आवश्यक हो गया है कि हमें अपनी इस कृषि को योगी कृषि में तब्दील करना, शाश्वत योगी कृषि। शाश्वत मतलब पहले से चली आ रही है, ये पहले दिन ही बहन जी ने कहा था कि ये ब्रह्म कुमारी की खोज नहीं है, ये पहले से चली आ रही है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम उसे भूल चुके हैं और उस भूल के कारण हमें बहुत से नुकसान हो रहे हैं, इसलिए उसे दोबारा याद करना आवश्यक है। हमारे ब्रह्म कुमार भाई बहने गांव-गांव में इस अलख को जगा रहे हैं, तो मैं फिर से एक बार दिल से साधुवाद देना चाहूंगा इस संस्था को कि ऐसे विषय को चुनना। अदरवाइज क्या होता है कि आध्यात्मिक संस्थाएं आध्यात्मिक तक तो सीमित रहती हैं, लेकिन आध्यात्म को हमारे नॉर्मल जीवन के साथ जोड़ देना और उसके लाभ सब तक पहुंचा देना, ये ऐसी बहुत कम संस्थाएं हैं, उनमें से एक हमारी ब्रह्म कुमारी संस्था है जिसे मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ऐसे विषय को चुना। मेरा यहां आने से पहले मेरा पर्पज भी केवल अध्यात्म के कारण ही था आना, कि मैं जो वे ऑफ लाइफ ये सिखाते हैं मैं वो सीखने के लिए आना चाह रहा था, लेकिन जैसे मुझे पता चला कि इन्होंने ये टॉपिक भी ले रखा है तो मैं मतलब सोच में पड़ गया कि ऐसी संस्थाएं भी हैं कि जो अध्यात्म के साथ साथ ये सब विषयों पर भी चिंतित हैं। सुबह के सेशन इनके अध्यात्म के लिए होते हैं, बाद में ये सेशन चलते हैं। तो ये ना केवल वे ऑफ लाइफ सिखा रहे हैं, ये हमें वे ऑफ ईटिंग भी सिखा रहे हैं कि कैसा अच्छा खाना आपको लेना है, वे ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी सिखा रहे हैं कि कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है आपको जीनी है, न केवल अध्यात्म के माध्यम से बल्कि अन्य विषयों को भी साथ साथ लेकर चलने से। आज मैं फिर इस बात को कंटिन्यू करूंगा कि जैसे भाई ने बताया हमारे कि योगिक कृषि से किस प्रकार से पेड़ पौधे फलते फूलते हैं, उसका उदाहरण हम कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें मशीनों की आवश्यकता नहीं है। मशीनें बन चुकी हैं, हालांकि वो भी मिल जाएंगी आने वाले समय में, वो भी आएंगी, सरकारें भी उसके लिए अब लग गई हैं, लेकिन कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप दूर ना जाएं, हमारे इसी संस्था में आप पेड़ पौधों को देखें, या अन्य धार्मिक स्थलों पर भी हम जब जाते हैं वहां पर आप पेड़ पौधों को देखेंगे तो वो पेड़ पौधे अलग ही आपको खिलते फूलते हुए दिखते हैं। ऐसी ऐसी मैंने धार्मिक संस्थाएं देखी हैं जहां पर जो पौधा उग ही नहीं सकता था, जहां पर वो एनवायरमेंट ही नहीं उसके लिए, लेकिन उन्होंने अपने सिमरन के माध्यम से, अपने जो है भावनाओं के माध्यम से, अपने योग के माध्यम से, अपनी साधना के माध्यम से वैसी वैसी फसलें भी वहां पर ले ली, बंजर जमीनों को भी उन्होंने जो है वो उपजाऊ बना दिया। तो ये तो हम डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं कि मेरे घर के आगे हम लोगों ने पौधारोपण किया। उस सोसाइटी में कोई बिल्कुल पौधे नहीं थे, जब मैंने वहां ज्वाइन किया तो डीसी साहब से मिलकर मैंने उनसे अनुरोध किया कि हमें यहां पर पौधारोपण ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। एक अभियान चला दिया हमने, पौधे लगाए। मेरे घर के गेट के बाहर मेरे जो गनमैन थे उन्होंने एक पौधा लगाया, उसके साथ कतार में और पौधे भी लगे हुए थे, लेकिन जैसे ही वो मुझे लेने आता तब भी वो पौधे को देखता, उसके पास खड़ा हो जाता, और जब छोड़ के जाता वापस तब भी उसके पास खड़ा हो जाता वो। तो मैं भी कुछ रुचि पहले लेता हूं इन चीजों में, इस प्रकार की चीजों में, तो मैंने उसको वैसे ही कहा, मैंने कहा सुरेंद्र नाम था उसका, सुरेंद्र तुम यार रोज इससे बातें किया करो अच्छी अच्छी, तुम देखना ये ज्यादा जो है फल फूल जाएगा। और आप यकीन नहीं मानोगे, उसके साथ वाले पौधे उनकी हाइट अगर इतनी है तो वो यहां ये हाइट ले गया वो पौधा, और इतना मजबूत उसका तना रहा। तो मैंने तो खुद एग्जाम्पल अपने घर के बाहर देखा है। तो हमें जो है योगिक कृषि को अपनाना होगा, तभी हम जो है इस कृषि को बचा पाएंगे, हमारे किसानों को बचा पाएंगे, हमारी हेल्थ को बचा पाएंगे, हमारी मिट्टी को बचा पाएंगे, हमारे जल को बचा पाएंगे। जल की अगर हम बात करें, जल को इतना दूषित कर दिया है कि हमारी नदियां मरने लगी हैं। हमारी साहिबी नदी जो सीकर से निकलती है और हरियाणा में रेवाड़े की तरफ जाती है, वो हमने छोटे छोटे डैम बनाकर उस नदी को ही मार दिया। विज्ञान आवश्यक है, लेकिन विज्ञान का प्रयोग इतना ना हो कि हमारा वातावरण ही उसमें खत्म हो जाए। चाइना का एग्जाम्पल दिया, अब देखिए चिड़िया खत्म कर दी, बैलेंस ही खत्म कर दिया हमने। जो भगवान का बनाया हुआ बैलेंस है, प्रकृति का बनाया हुआ बैलेंस है, यदि हम उसे खत्म करेंगे तो वो कहीं ना कहीं भरपाई हम ही से करेगा, हमें को नुकसान पहुंचाएगा। कल की लघु नाटिका में भी ये चीज दर्शाई गई। तो ये हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे ये तथ्य हमारे सामने आते हैं, तो हमें इन सब को ध्यान में रखना होगा। आज के हमारा जो शुरू में भजन शुरू हुआ उसमें भी यही बात की गई, पांच तत्व की पुकार दुनिया को संवारिए। ये पांच तत्व वही हैं हमारे, भूमि जल वायु अग्नि, ये यही वो तत्व हैं जो उनकी वो पुकार रहे हैं कि दुनिया को संवारिए। तो हमें इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए योगी कृषि को अपनाना है, अध्यात्म को कृषि से जोड़ना है, ना केवल कृषि से बल्कि अन्य एरिया जो हमारे हैं जीवन के उसमें भी जोड़ना है, ताकि हम एक खुशहाल जीवन जी पाएं, एक समृद्ध जीवन जी पाएं। फिर से मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम घर पर जाकर आगे जाकर इसको और आगे प्रचार प्रसार करेंगे। धन्यवाद। ओम शांति।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने अनुभव के साथ आपने ये बताया कि कैसे दिल की आवाज पेड़ पौधे सुनते हैं। यहाँ पर एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगी कि यदि आपने ड्राइविंग सीखी हो और कार न चलाए तो ड्राइविंग किस काम की। यदि आपने कुकिंग सीखी हो और किचन में जाके आप खाना न पकाए तो वो खाना किस काम का। उसी तरह अध्यात्म कोई अलग पंथ नहीं है, लेकिन जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वे कृषि हैं, चाहे वो युवा जगत है, चाहे वो महिला उत्थान है, या हर क्षेत्र में अध्यात्म एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम अध्यात्म को ये न समझे कि जीवन से अलग कोई पंथ है, किंतु अध्यात्म बेहतरीन जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी हम आमंत्रित करती हैं ब्रदर के रावत जी। आप भुवनेश्वर के उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के रिटायर्ड डीन हैं। आपके अंडर में करीब करीब 25 से अधिक स्टूडेंट पीएचडी और पीजी कर रहे हैं और मृदा स्वास्थ्य में आपकी स्पेशलिटी है, तो आज आप चंद शब्दों में मृदा स्वास्थ्य पर अपने विचार रखेंगे।
ओम शांति। मैं हिंदी में थोड़ा थोड़ा, इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा बोलूंगा। मनसा सिंह जितने डिग्निटरीज है वो मेरा ऑनरेबल डिग्निटरीज ऑन द डायस, और मेरे सामने जो बैठे हैं भाई, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सबको मैं वेलकम करता हूँ। अच्छा, मेरा पहले दो स्पीकर जो बताए, बाला साहब भ्राता, जितेंद्र भ्राता, आध्यात्मिक कृषि, योगिक कृषि के ऊपर वो थोड़ा एम्फासाइज किया। आई एग्री टू सम एक्सटेंट, लेकिन साइंस को, विज्ञान को हम छोड़ नहीं सकते। विज्ञान के साथ ये योगिक कृषि जो है उसके ऊपर रिसर्च करना जरूरी, बहुत जरूरी है। जो जेसी बोस के बारे में बताए, प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू रेडिएशन, टू लाइट, टू साउंड, वाइब्रेशन, वो कर सकता है, करता है कुछ। अभी जो वाइब्रेशन के बारे में बताए वो भी करेगा, बट वी हैव टू डू मोर रिसर्च। लेकिन विज्ञान को छोड़ के हम टोटली आध्यात्म के ऊपर करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि मैं बताता हूं। एनी प्लांट, प्लांट का दो चीज, एक है खाद्य खाता है, फूड, एंड अनदर थिंग हमारा जो मेडिसिन खाते हैं। प्लांट को निरोगी रखने के लिए मेडिसिन की जरूरत है, दो चीज। हम मेडिसिन के बिना बच सकते हैं, लेकिन खाना का बिना बच नहीं सकते। दैट इज माई फर्स्ट पॉइंट। एंड ए प्लांट गेट्स इट्स फूड मिट्टी से लेता है, एंड कुछ वायुमंडल जो है एटमोसफियर पे नाइट्रोजन लेता है, कुछ सल्फर भी लेता है। प्लांट का 17 एलिमेंट्स की जरूरत है, खाद्य पोषक द्रव्य 17। वो जो 17 है, तीन जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वो पानी से लेता है, वायु से लेता है, बाकी मिट्टी से सब लेता है। जो लेता है वो मिट्टी में है कि नहीं देखना पड़ता है। जंगल में बहुत सारे पेड़ है, जंगल में हम रासायनिक खाद डालते नहीं, फर्टिलाइजर, वी आर नॉट अप्लाइंग एनी फर्टिलाइजर इन द फॉरेस्ट, बट ओवर द इयर्स प्लांट्स आर देयर विदाउट एनी फर्टिलाइजर, हाउ। लेकिन हमारा जो फसल करते हैं, जस्ट टेक वन एग्जाम्पल, कैबेज फील्ड, 1 acre ऑफ कैबेज फील्ड, उधर थाउजेंड्स ऑफ कैबेजेस आर देयर, वी आर रिमूविंग द कैबेज कैबेज खाता है, कहां से खाता है? मिट्टी से खाता है। बट व्हाट वी आर गिविंग टू द कैबेज फील्ड, वी आर अप्लाइंग सम फर्टिलाइजर्स, सम मैन्योर्स, इज इट एनफ? अब जस्ट इमेजिन कीजिए कितना फूड एंड न्यूट्रिशन इट इज टेकिंग अप, वी आर रिमूविंग फ्रॉम द फील्ड। सो फील्ड से लेता है, तो साइंस बोलता है जो स्टॉक है वो स्टॉक से खत्म होता है। सो ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स आर देयर इन द फील्ड इन द सॉइल, बहुत सारे है। नाइट्रोजन 100 किलो जरूरी है, हमारा 1500 किलो मिट्टी में है, ऊपर मिट्टी में। लेकिन ये सब अनअवेलेबल अखाद्य के रूप में है, जैसा हमारा व्हीट वेजिटेबल्स धान जैसा है, उसके खाना पकाना पड़ता है। आप सब्जी बनाएंगे खाना खा नहीं पाएंगे, इसीलिए धान जैसा गेहूं जैसा ये सब अखाद्य के रूप में ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर देयर इन द सॉइल। उसको खाद्य बनाएंगे तो खाना पकाएंगे तो वो पेट खाएगा, और खाना पकाने के जो कुक जरूरत है वो कुक सब ऑर्गेनिज्म है, अर्थ फॉर्म है, मिट्टी में ऑर्गेनिज्म बहुत सारी होना चाहिए। वो फर्टाइल सॉइल जो बोलते हैं, फर्टाइल सॉइल में वो कुक जो बोलते हैं ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जीवाणु बीजाणु वो जो है वो है कुक। क्या हुआ है आजकल जो कृषि करते हैं, साइंटिस्ट ने बताया है, यू अप्लाई फर्टिलाइजर्स एंड सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, गो फॉर ग्रीन मैन्योर, लेकिन वो करते नहीं। आप चाची भाई बहन इधर है, लेकिन वो सब करते नहीं, वो यूरिया डालते हैं, यूरिया ओनली यूरिया डालते हैं, इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, असंतुलित आहार देते हैं। इसकी वजह क्या होता है, माटी एसिडिटी हो जाता है, माटी हार्ड हो जाता है। तो हार्ड हो गया, एसिडिटी हो गया, दैट मीन्स और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उधर जो कुक है, वो कुक सब उनका जो पॉपुलेशन है वो रिडक्शन हो गया है। तो कुक नहीं रहेंगे तो आपका घर में सब धान है, वेजिटेबल्स है, पल्सेस है, एवरीथिंग इज देयर, बट इफ नो कुक इज देयर देन यू हैव टू यू कैन नॉट गेट फूड। सेम थिंग हैज हैपन टू द प्लांट्स, एवरीथिंग इज देयर इन द सॉयल, बट if cooks will not be there, the population has been reduced drastically. So even if food is there, the plant is not getting that much of food. So isliye main bolta hu, aap jo stock hai, first thing we have to maintain the stock in the soil. Second thing, wo jo stock hai, us jo khad banate hai microorganism, inka population maintain karna hai. Do cheez, maintain the stock, then have a good population of a microorganism in the soil. And how you can do it? You have to do soil testing. After soil testing, you apply fertilizers or manures. Even organic farming can do if you can supply adequate amount of nutrients, whatever is required by the plant. Definitely, your soil will be healthy, and you can reduce the dose of fertilizers. And you can get good quality food. You can get sufficient food, and it will be sustainable in the long run. दीज दो पांच मिनट टाइम मेरे को दिया है, मैं दो चीज बोलता हूँ, मेंटेन दी स्टॉक, घर में आपका खाद्य रखना चाहिए, उसके बाद आप तैयार कीजिए अच्छा क्वालिटी फूड, इधर जो बनता है आप बनाइए, ठीक रहेगा। तो ये दो चीज मैंने एक्चुअली पांच मिनट टाइम मेरे को दिया है, तो इसीलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये दोनों चीज। और आध्यात्मिक जो ना, वी हैव टू डू मोर रिसर्च। जो मेरे पहले जो दो स्पीकर जो बताए हैं वो ठीक है, बट वी हैव टू डू रिसर्च एंड डेफिनेटली वी हैव टू बी सैटिस्फाइड दैट यस दीज आर दे हैव गॉट सम रिजल्ट एंड अर्लियर ऑल्सो सम पीपुल हैव गॉट रिजल्ट दैट प्लांट्स रेस्पॉन्ड। और जो सीड के ऊपर बताए, बीज के ऊपर बताए, यस वी आर प्रोवाइडिंग रेडिएशन एंड वी आर इंक्रीजिंग द जर्मिनेशन। तो सेम थिंग वाइब्रेशन के हिसाब से, वाइब्रेशन होता है आप मेडिटेशन के द्वारा, तो डेफिनेटली इट विल हैव सम इफेक्ट ऑन सीड जर्मिनेशन एंड इवन डिजीजेस एंड रेपेस। इफ वाइब्रेशन विल बी देयर, डेफिनेटली द प्लांट्स विल रेस्पॉन्ड एंड लेस डिजीज एंड लेस इंसेक्ट अटैक विल बी देयर। हम घर में इधर बैठे हैं, जो एक्चुअली व्हाट एवर इज कमिंग टू आवर माइंड दैट इज मोर देन इफ यू वुड बी देयर इन द रोड वेयर मेनी ट्रैफिक इज देयर। दिस इज द डिफरेंस। सो विज्ञान के साथ आध्यात्मिक जो मेडिटेशन, ये दोनों जाना चाहिए, एंड इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट फॉर maintaining the nutrition of the soil and plant nutrition is the time. Thank you so much for giving me this opportunity to be here for 5 minutes. Thank you.
चंद शब्दों में अपनी भावनाओं को रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. वन थिंग आई वुड लाइक टू एड टू योर स्पीच इज, वी आर नॉट अगेंस्ट द साइंस बट वी रिक्वेस्ट टू एक्सपेरिमेंट साइंस विद स्पिरिचुअलिटी. हम विज्ञान के विरोध में नहीं हैं, हम विज्ञान के साथ अध्यात्म को जोड़ के आगे बढ़ने में बिलीव करते हैं. एक बार आप इसका प्रयोग करके देखिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी अपने आप में एक साइंस है और साइंस का फॉर्मूला ही है कि आप अप्लाई करें, एक्सप्लोर करें, एक्सपेरिमेंट करें, फिर एक्सपीरियंस करें. साथ साथ हमारे हमने निमंत्रण दिया था डॉक्टर विलास खराचे जी, आप डायरेक्टर ऑफ रिसर्च डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यालय अकोला से हैं. कुछ कारण से आप आ नहीं पाए हैं, लेकिन आपने अपनी शुभ भावनाएं भेजी हैं. टू द ऑर्गेनाइजर कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट माउंट आबू राजस्थान. सर, आई एम थैंकफुल फॉर इन्विटिंग मी फॉर द कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट स्केड्यूल टू बी हेल्ड ड्यूरिंग 2 जून टू 6 जून 2023 एट माउंट आबू. Due to unavoidable reason, I am not able to attend the conference. I am herewith giving my best wishes for the deliberations in the said conference. With warm regards, yours sincerely, Dr. Vilas Kharache ji. आप जहां भी हैं सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. अब हम आमंत्रित करती हैं ब्रदर विनोद लाहोटी जी को. आप जियो लाइफ एग्रीटेक मुंबई, वहां के CMD हैं. उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि एक मोती था, उसे अंगूठी में फिक्स करने का सोचा, लेकिन मोती ने सोचा मैं समुन्दर के सीप में ही ठीक हूं, क्योंकि यदि मैं समुन्दर के सीप में हूं तो अनेक मोतियों को पैदा कर सकता हूं. उसी तरह आपका एजुकेशन तो MBA की ओर रहा, लेकिन आपका जो रस था वो मृदा स्वास्थ्य पौधों के पोषण में था, और आपने अपने इस रस को और मैं कहूंगी प्रकृति की पुकार को सुना, समय के डिमांड को सुना, और इसको सुनते हुए आपने जियो लाइफ एग्रीटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर आगे कदम रखे, जिस कंपनी को काफी सारे पुरस्कार मिले हैं, जिसमें से विशेष पुरस्कार है बेस्ट कंपनी फॉर बायो इनपुट्स 2021 इको एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस के दौरान एग्रीकल्चर और टूडे ग्रुप के द्वारा ये अवार्ड मिला है. साथ ही साथ दुनिया के दिग्गज सेप इंडिया द्वारा प्रस्तुत कंपनी ऑफ द ईयर इन एग्रीकल्चर के रूप में डेयर टू ड्रीम अवार्ड 2021 जो TV9 नेटवर्क और सॉफ्टवेयर की दुनिया की ओर से आपको मिला है, और साथ साथ प्रतिष्ठित कृषि व्यापार शिखर सम्मेलन और पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ जैव कृषि इनपुट कंपनी की तौर से उसमें भी आपको ये पुरस्कार मिला है आपकी कंपनी को. और आप इसके अलावा महेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल, आदित्य विक्रम बिरला मेमोरियल ट्रस्ट और ब्रह्मा कुमारी के रूरल एवं एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट एवं एग्रीकल्चर विंग के भी आप लाइफ मेंबर हैं. तो आप अपने अनुभव से हमें अवगत कराएंगे कि योगिक कृषि में विज्ञान और अध्यात्म का महत्व क्या है.
ओम शांति. आज यहाँ पे हम देख रहे हैं, पिछले 2 दिन से आप सभी भाई बहन इतनी व्यस्त समय, अपना इम्पोर्टेंट समय को देखते हुए कुछ नया सीखने के लिए, समझने के लिए इतने इंटरेस्ट के साथ आए हैं, तो इसके पीछे उद्देश्य तो यही रहेगा कि यहां से सीख के जाए और हम इस देश के लिए और हमारे एग्रीकल्चर कम्युनिटी के लिए कुछ करें, कुछ दे. इसका मतलब सबकी भावना देने की है, और जिनकी भावना देने की है वो देवी और देवता है. तो मंच आसीन और इस सभा में उपस्थित सभी देवी और देवताओं को मेरा प्रणाम. मैं 2000 11 से ब्रह्म कुमारी से जुड़ा हूँ, ज्ञान में हूँ, रेगुलर राजयोग का प्रैक्टिस करता हूँ। उसके पहले कई जगह पे जो स्पिरिचुअल की प्यास थी 2008 से 11 कई जगह घूमे मैं और वाइफ ने, लेकिन उतना मजा नहीं आया। हर जगह बोलते थे हम सही है, वो गलत है, वो सही है, वो गलत है, इसमें थोड़ा हमारा कनेक्शन नहीं बैठा। तो 2011 से जब से राजयोग कर रहे हैं, ये बोलने में बहुत खुशी होती है कि आज तक ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ या ऐसा कोई चीज नहीं हुआ जिसकी वजह से हम डाउन हुए, चाहे परिवार में हो या ऑर्गेनाइजेशन में हो, हर चीज होता है, कम ज्यादा बच्चों का सब होता है, लेकिन कभी भी हमारी मेंटल स्टेटस को कभी डाउन होने नहीं दिया। ये राजयोग का कमाल है, ये हमने एक्सपीरियंस किया है। और बाद में मैं ब्रह्म कुमारी इसके एग्रीकल्चर विंग से जुड़ा, धीरे धीरे योगिक खेती के बारे में पता चला। तो उसके पहले जैसे हमारी कंपनी है एक रिसर्च बेस्ड कंपनी है जो कि नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रोबियल एक्सट्रैक्ट टेक्नोलॉजी और इंडियन ओरिजिन बोटानिकल एक्सट्रैक्ट पे रिसर्च करके विषम मुक्त खेती के लिए जो जो लगता है सारे सोल्यूशन हम देते हैं, जिससे कि सॉइल हेल्थ और प्लांट न्यूट्रिशन में कंप्लीट सोल्यूशन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो करना चाहते हैं उनके लिए है। और हमारा मकसद है कि मृदा की क्वालिटी को, सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करें, जिससे कि फिर क्रॉप हेल्दी होगा, क्रॉप हेल्दी होगा तो क्रॉप के अंदर न्यूट्रिशन अच्छा आएगा और उससे इंसान हेल्दी होगा। तो किसान को यील्ड न कम होते हुए उनका यील्ड अच्छा आता आए, नॉर्मल कंडीशन से अच्छा आए, साथ साथ में पोषण युक्त विषमुक्त सात्विक अन्न उगाने की पद्धति हम लोग सिखाते हैं किसानों को। तो जैसे हम दो दिन से सुन ही रहे हैं योगी खेती के लिए क्या करना है, तो उसी तरह अगर हमारा स्वास्थ्य भी अगर अच्छा रहना है तो उसमें हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा सेल्फ डिफेंसिव सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। वो तभी आएगा जब हमारा जो अन्न हम खा रहे हैं उस अन्न के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन होंगे। न्यूट्रिशन है नॉट ओनली जस्ट मिनरल्स, प्लांट के लिए जैसे हर स्टेज में अलग अलग मिनरल, विटामिन, एंजाइम, एंटीऑक्सीडेंट लगते हैं, तो उसी तरह इंसान को भी हर एज के टाइम पे अलग अलग न्यूट्रिशन, अलग अलग पोषण लगते हैं। तो वो पोषण सही अगर मिलता है तो हमारा हेल्थ अच्छा होता है। उसी को बेस पे रह के हमने जब योगिक फार्मिंग के बारे में जाना तो हमको बहुत इंटरेस्ट आया। हम बोले अगर हम न्यूट्रिशन के द्वारा पोषण युक्त विषमुक्त खेत तो कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें योगिक खेती के द्वारा पॉजिटिव एनर्जी डाल सके, आध्यात्मिक शक्ति डाल सके, तो उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है, ऐसा जैसे हमको पता चला। तो हमारा विचार हुआ कि हमको इसको ट्रायल करके देखना चाहिए। इसके ऊपर हमने हमारी टीम से चर्चा किया तो उनको तो विश्वास नहीं था, लेकिन अगर हम पीछे जाके देखें तो पहले ऐसे ही होता था, योगी खेती नहीं बोलते थे लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिसेस जो होते थे किसान के, वो जैसे आज बालासाहब भाई जी ने भी बताया कि हर समय पे पूजा करके परमात्मा का आह्वान करते थे और वहां पे पॉजिटिव एनर्जी उस फॉर्म पे आती थी। तो नॉट ओनली पूजा करते थे, जब प्रैक्टिसेस करते थे, कोई भी प्रैक्टिसेस थे उस टाइम पे भी उनके विचार जो थे पॉजिटिव थे। जैसे अभी कोई कलचाई कर रहे हैं, घास निकाल रहे हैं, तो उस टाइम पे गीत गाते थे, हर स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग गीत गाते हैं, बराबर। तो कुछ इस तरह होते हैं वो गीत।
काले मेघा पानी तो बरसाओ, बिजली की तलवार नहीं बूंदों के बाण चलाओ। मेघा छाए बरखा लाए, गिर गिर आए गिर के आए।
और जब कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस करते थे तो उनके विचार कुछ ऐसे होते थे।
चलते हैं इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयाँ लेती है,
अंगड़ाइयाँ लेती है।
जो ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है,
जीवन का सुख देती है।
और जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो विचार कुछ ऐसे होते थे।
सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती,
मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती।
बाद में ऑटोमेशन आया, सारे चीज मशीन से होने लगे, ये वाला कनेक्शन टूट गया, जो किसान जो प्रैक्टिसेस करते थे वो कनेक्शन टूट गया। और इसके बारे में जब सोचा गया कि इस कनेक्शन को कैसे जोड़ा जाए, तो एक ही रास्ता दिखता है, योगिक खेती। इस खेती के द्वारा फिर से परमात्मा को हम कनेक्ट करके अपने खेत में, खेत के हर एक्टिविटीज में हम फिर से इन्वॉल्व कर सकते हैं, उन शक्तियों को, आध्यात्मिक शक्तियों को हमारे खेत में हम ला सकते हैं। तो अभी तक हमने सुना था बाला साहेब भाई जी से कि किसान के एंगल से उन्होंने जो पिछले 17 साल से जो योगी खेती को अपनाया, उनका फायदा कैसा हुआ उन्होंने बताया। मैं बताऊंगा एज ए कमर्शियल कंपनी, जियोलाइफ एज ए कमर्शियल कंपनी इस चीज को कैसे अपने सिस्टम में ढाला है और इसका कैसे फायदा हुआ है। तो जियोलाइफ का रिसर्च फार्म है पुणे में, जहां पे हमारे पूरी टीम ऑफ साइंटिस्ट है। कोई भी नई पद्धति, कोई भी नया प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो हमारे रिसर्च फार्म में इन हाउस ट्रायल्स होते हैं। 5.5 एकड़ का ट्रायल है, वहां पे इनविट्रो ट्रायल्स होते हैं, फिर पॉडकल्चर होते हैं, वहां पे स्क्रीनिंग होने के बाद में डिजाइन ट्रायल्स होते हैं, फिर मल्टी लोकेशन ट्रायल करते हैं हमारी टीम के द्वारा। तो वहां पे हमने प्लान किया, प्रपोज किया कि हमको योगी खेती प्रैक्टिस करना है। हमारी टीम का जो साइंटिस्ट लोग थे, एमएससी पीएचडी किए, उन लोगों को नहीं पट रही थी बात, लेकिन हमने कन्विंस किया, करके देखते हैं इसको। इससे पहले हमारे कंपनी में पर्सनल लाइफ में आध्यात्म था, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में कभी आध्यात्म का कोई कनेक्शन ही नहीं था। तो वहां पे हमने स्टार्ट किया, हमने डिसाइड किया, एक प्लॉट लगा के हम योगी खेती करेंगे। वहां पे पुणे के जगदम्बा भवन, जो ब्रह्म कुमारी का सेंटर है, वहां से भाई जी आए थे, भाई जी यहीं पे बैठे हैं, विठल भाई जी, तो उन्होंने आके वहां पे हमारी टीम को ट्रेन किया। सीड को पहले सेंटर पे ले जाके एक ही वैरायटी के सीड को, एक ही लॉट के सीड को लेके आधे सीड को पॉजिटिव वाइब्रेशन दिया, स्टार्ट किया मेथी के क्रॉप से, जल्दी से रिजल्ट मिलेगा बोल के। आधे सीड को पॉजिटिव वाइब्रेशन दिए, देने के बाद में सोइंग किया, उस प्लॉट को रेगुलर पॉजिटिव वाइब्रेशन देते थे। और बाद में देखे गया कि सारे प्रैक्टिस सेम, पानी न्यूट्रिशन सब सेम है, सिर्फ योग करने से वहां पे यील्ड में बहुत बड़ा डिफरेंस आया। फिर हमारी टीम को लगा कि सर रिजल्ट तो अच्छा है, लेकिन और कुछ हो सकता है, साइंटिस्ट लोग है ना, और कोई पैरामीटर हो सकता है, इसका ही वो कैसे पता चले, हमको रीकन्फर्म करना है और मल्टी लोकेशन में करना है। तो उन्होंने फिर रीकन्फर्म किया, फिर से ट्रायल लगाए, फिर किए, और देखा गया कि कंट्रोल के मुकाबले 19.62% यील्ड ज्यादा आया, बाकी सारे पैरामीटर सेम। ये अलग अलग जगह पे किया, सब जगह पे रिजल्ट आया, बाद में अलग अलग क्रॉप पे किया, वहां पे रिजल्ट आया। फिर उसके नेक्स्ट स्टेज गए, हमको बाद में पता बताया गया कि आप तो अभी क्रॉप पे देख रहे हो, लेकिन हर चीज के अंदर, हर चीज जो बनती है पंचमहाभूतों से बनती है, आपका प्रोडक्ट भी उसी से बनता है। अब हम इसको ट्रायल करते हैं पैक किए हुए प्रोडक्ट के ऊपर, ये सरप्राइज है आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको सुनिएगा। हमारे कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को लिया, कार्टून के अंदर पैक किए हुए थे, उसमें से दो दो पैकेट, दो दो बॉटल लिए, एक बॉटल और एक पैकेट को, दो आइटम को योग किया उसके साथ, जो पैक हुआ हुआ है उसके अंदर कुछ नहीं डाला है, एक रुपया का भी एक्स्ट्रा इनपुट कॉस्ट नहीं, उसके ऊपर योग किया। करने के बाद में ट्रीटेड अनट्रीटेड को मल्टी लोकेशन ट्रायल्स हमने किया, जैसे आप देख सकते हैं चिल्लीज के ऊपर है, लोकेशन डिटेल सब दिया, मैं डिटेल नहीं जाऊंगा, ट्रायल रिपोर्ट शेयर हो सकता है कभी भी, तो इसमें देख सकते हैं ग्रोथ में, यील्ड हाइट में 43% 35% वेरिएशन, ये है ब्रिंजल में, आई एम नॉट एबल टू सी द परसेंटेज फ्रॉम हियर, या 40+% ज्यादा दिख रहा है। अलग अलग क्रॉप्स के अंदर आप देख सकते हैं कि सेम प्रोडक्ट, जबकि पैक होने के बाद में पॉजिटिव वाइब्रेशन डाला गया, उसके अंदर योग किया गया, उसमें इतना बड़ा फर्क आया। अब हमारा तो बनिया बुद्धि है, हमारा तो इसमें चलता है आगे, जब एक्स्ट्रा इनपुट डाले बगैर, एक्स्ट्रा कॉस्ट करे बगैर, इतने क्रॉप के अंदर इतने प्रोडक्ट्स का रिजल्ट अच्छा आता है, तो इसको आगे ले जाना चाहिए। तो ये सब ट्रायल रिपोर्ट्स अलग अलग जगह पे किए हुए हैं पूरे, ये देखा कि जवारी से लेके हर वेजिटेबल, हर क्रॉप के अंदर रिजल्ट में वेरिएशन आया। फिर हमने बोला इसको हमको आगे ले जाना है, फिर हमने सोचा हमारे सारे सिस्टम में योग को लाना है, खाली एक जगह पे नहीं होगा, रिसर्च में नहीं होगा, प्रोडक्शन में नहीं, प्रोडक्शन पे भी लाना है, हमारा प्रोसेस सप्लाई चेन में भी लेके आना है, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में लाना है, और जहां पे कंजम्पशन होता है किसान, वहां पे भी योग को लाना है। इस संकल्प के साथ में आगे बढ़े हम। फिर हम, ये फैक्ट्री है जेजुरी में हमारी, इस फैक्ट्री के अंदर हमारी सारी टीम को राजयोग सिखाया, और वहां पे आज रेगुलर प्रैक्टिस होता है, रेगुलर मेडिटेशन होता है, पूरी टीम जब आती है, 150 के ऊपर लोग आते हैं, तो उनका विचार यही होता है आज यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें परमात्मा का वास होगा, और ये प्रोडक्ट जो भी किसान यूज करेगा उसको उसके लागत से कई गुना ज्यादा मुनाफा होगा, इस विचार के साथ योग के साथ वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है। फिर हमने हमारी टीम को इसका परिचय करवाया जो कि है इसको पूरा प्रोसेस को आगे ले जाने वाले हैं। अलग अलग जगह जहां पे रिव्यू मीटिंग्स होते हैं हमारे वहां के लोकल सेंटर के दीदी भाई जी को बुला के हमने इनको इंट्रोडक्शन किया सारी टीम को। आज हमारे यहाँ पे कुछ टीम आए हुए भी है, उनको नेक्स्ट लेवल का इनिशियल राजयोग सबका हुआ हुआ है तो अब यहाँ पे हम लोग लेके आए उनको कि नेक्स्ट लेवल का उनका ट्रेनिंग हो, उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। तो ये अलग अलग जगह पे हमारी ऑल ओवर इंडिया में टीम को हमने परिचय दिलवाया योग का। उसके बाद में किसानों के पास मैं तो कुछ पिक्चर्स आपको मॉडल की तरह बता रहा हूं। इंडिया में कम से कम 3000 गांवों में हमने सिलेक्शन करके लास्ट ईयर 300 क्लस्टर बनाए, वहां पे डेडिकेटेड टीम लगा के नियरेस्ट सेंटर से कनेक्ट करके हम किसानों को गांवों में योग के बारे में इंट्रोडक्शन करवाना स्टार्ट किए हैं। आज के डेट में हम जो जियो लाइफ जो बता रही है पोषण युक्त विषम मुक्त खेती करने की पद्धति सबको सिखा रही है उसमें एक्सपर्ट है, कोई डाउट ही नहीं। इंडिया में नहीं 40 देशों में हम एक्सपोर्ट करते हैं, हर कंट्री में सिमिलर रिजल्ट्स आते हैं। हिंदुस्तान में 22 राज्यों में हमारा ऑपरेशन है, 650 लोग कंपनी में काम कर रहे हैं। तो हमारा मकसद यह है कि किसान जो उनको तो पहले योगी को ऑर्गेनिक पता ही नहीं था उनको इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, विषमुक्त खेती में पहले कन्वर्ट कर रहे हैं, विषमुक्त खेती से धीरे धीरे वहां के सेंटर से कनेक्ट करके योगिक खेती में कन्वर्ट कर रहे हैं। दो से तीन साल उनको लगेगा पूरा ट्रांसफॉर्म होने के लिए, जब तक हमारी कंपनी हमारी टीम उनको हैंड होल्डिंग करेंगे कि उनका यील्ड में नुकसान न हो विषमुक्त खेती करते हुए। और जब 2-3 साल में वो आत्मनिर्भर बन जाएगा किसान, फिर हम नए किसान की तरफ काम करेंगे, वो किसान पूरी तरह से योगिक में आ जाएगा। और आगे हमारा प्रयास ये भी चल रहा है कि उन किसानों को जो लोग योगिक का अन्न उगाए, ब्रह्म कुमारी इसके द्वारा ही एक कोई प्लेटफॉर्म बनाने का प्लान चल रहा है जिनको वो अन्न को बेचने में भी उनको मदद किया जाए। तो वो नेक्स्ट लेवल की तैयारी है, पहले किसान उगाए उसका अनुभव करे और फिर हम उसको वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अलग अलग जगह पे सब जगह पे दीदी भाई जी लोग आकर किसानों को कर रहे हैं और अभी भी हमारे अभी जो क्रॉप्स है उसकी भी प्लानिंग सब हुई है इस साल के लिए। तो उसके बाद में हमारी टीम का सबका ऑनलाइन में ऑल ओवर इंडिया टीम का राज्यों का कोर्स हुआ है, अलग अलग लैंग्वेजेस में किया है। टोटल 278 लोगों ने राज्यों का कोर्स 7 दिन का कोर्स कंप्लीट किया हमारे पास। इसका बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। हमारी टीम ही बता रहे थे कि उन्होंने अपने लाइफ में कुछ ऐसी चीजें थी जिन्होंने छोड़ दिया, उनके साथ के टीम मेंबर्स ने छोड़ दिया। काफी लोग सात्विकता की तरफ आ रहे हैं, अच्छाई की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि सतयुग आना है तो सतयुग की तैयारी तो करनी है, सात्विक अन्न भी चाहिए और सात्विक लोग भी चाहिए। तो उसकी तैयारी करने में हमारा एक छोटा सा प्रयास है। मैं जहां भी जुड़ा हूं नॉट ओनली इन कंपनी जियोलाइफ के लिए तो एक ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा हूं, हर जगह पे प्रयास होता है कि लोगों को राजयोग से जुड़े, हर जगह पे उनका कोशिश कर रहा है और परिवर्तन आ रहा है। और जिस तेजी से परिवर्तन आ रहा है उससे लगता है कि सतयुग भी बहुत जल्दी ही आएगा, उस तेजी से परिवर्तन भी आ रहा है। उसके बाद में बीके शिवानी दीदी ने जियो लाइफ परिवार के लिए एक स्पेशल सेशन रखा था, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव वाइब्रेशंस एंड हाउ टू यूज एनर्जी इंपैक्ट अवर सेल्फ अवर सराउंडिंग एंड अवर प्लांट्स। तो इसके ऊपर हमारे पूरे टीम का, सारे डीलर्स का, किसानों का, सबका हमने सत्र रखा था, ऑनलाइन पे हुआ था, दीदी ने सेशन रखा। 6000 से ज्यादा लोगों लाभार्थी थे इसमें पूरे अभी तक के, बाद में भी वीडियो यूट्यूब में कंटिन्यू लोग देख रहे हैं, चालू है इसका। तो इसका काफी इम्पैक्ट आया परिवार में भी, मित्रों में भी, जिन्होंने भी देखा है उन्होंने बताया कि बहुत बड़ा हमको एनलाइटन हुआ है, कभी सोचा ही नहीं था इस एंगल से। तो अपने लाइफ में उस चीज को अप्लाई करने की कोशिश सब लोग कर रहे हैं। अभी अभी हमारे सारे मैनेजर्स पूना आए थे तो उनको वहां पे जगदम्बा भवन विजिट कराकर उनको एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करवाया वहां पे जो सेंटर है वहां पे। और पिछले हफ्ते चाइना में वर्ल्ड का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर एक्सपो होता है सीएसी, हम कोविड के पहले हर साल जाते थे, अभी 3 साल के गैप के बाद में अभी गए। वहां पे वर्ल्ड से सारे जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज आई थी अग्री इनपुट्स की, उन सभी कंपनीज में काफी कंपनी के साथ मीटिंग हुआ और उनको भी हमने इंट्रोड्यूस किया है राजयोगा के बारे में और योगी खेती के बारे में। और विशेष बात यह है कि 4 साल पहले अगर हम बोलते थे तो कोई विश्वास नहीं करता था इन चीजों पर, कोविड ने लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज का तरफ झुकाव बढ़ा है, लोग विश्वास कर रहे हैं, प्रयत्न करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हम लोग लंदन थे लास्ट मंथ, तो वहां पे ग्लोबल हाउस जो ब्रह्म कुमारी का है वहां पे गए थे, तो वहां से अभी कोऑर्डिनेट हो रहा है जियो लाइफ के 40 देशों में जहां जहां हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, कंपनीज है, डिस्ट्रीब्यूटर यानी वहां की कंपनीज है जो हमसे लेके वहां पे बेचती है, तो उनके ओनर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके उनको राज्यों से जोड़ के वहां पे भी योगी खेती का इंट्रोडक्शन करने का प्लान चालू हुआ है। तो वो भी एक प्रयास बाबा करा रहा है, हम तो बस माध्यम बने हैं, बाबा जहां जाते हैं वहां पे कराते हैं। तो अल्टीमेट गोल है कि फार्मर्स को पोषण युक्त विषमुक्त सात्विक अन्न उगाने की पद्धति सिखाना है, इस पे पूरी तरह से लगे हुए हैं। और हम सबको पता ही है, जैसे आज ही बताया गया है कि प्लांट हो, इंसान हो, हमारे कोई भी एनिमल हो, सबके अंदर हमारे विचारों का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। हमारे शरीर में हर क्षण हर पल जो चल रहे विचार है उसके हिसाब से तरंगे चलती है। अगर हम हमारे बारे में, लोगों के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव सोच रहे हैं तो उस तरह के तरंगे अंदर जाएंगे। नेगेटिव सोच रहे तो वो हमारे शरीर के पार्ट्स को डैमेज करेगा, और हम पॉजिटिव सोचे तो हमको ही हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर बिल्डअप करेगा। उसी तरह प्लांट के अंदर भी साइंटिफिकली इन तरंगों के द्वारा ही सारा पोषण होता है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है, आप सबको पता ही है। हमारे देश में आज से 200 साल पहले ही, ज्यादा पुरानी बात नहीं, 6-7 पीढ़ियों पहले ही बात है, हमारा देश इतना समृद्ध था, पूरे विश्व को खाना खिलाने के कैपेसिटी में था, वो सारा चीज डॉक्यूमेंटेड है। मतलब लॉर्ड मैकेले ने ये सब बताया है ब्रिटिश के पार्लियामेंट में फरवरी 2, 1835 में, कि भारत का वो लोग आए थे हिंदुस्तान में 1600 में, 30 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म किया था इंडिया में, बिजनेस के बहाने आए थे, उद्देश्य था देश को कब्जा करने में ही। लेकिन 200 साल लगे उनको, वो अपने देश को कभी कब्जा नहीं कर पाया 1800 तक। बाकी जिन जिन देशों में ब्रिटिश गए थे उनको बहुत कम समय में वहां पे उस देश को कब्जा करने में लगा, क्योंकि उन्होंने वहां की संस्कृति को इमीडिएटली खत्म कर दिया, लोकल कल्चर को खत्म कर दिया, लेकिन इंडिया को कर नहीं पाए वो लोग। उन्होंने बहुत प्रयास किया, 200 साल हुआ नहीं, तब इन्होंने रिसर्च किया कि इंडिया में ऐसा क्या है जिसके पीछे हम कर नहीं पा रहे। उन्होंने रिसर्च किया, देखा, उन्होंने बताया है, डॉक्यूमेंटेड है हर चीज, कि वो इंडिया के कोना कोना घुमा, इंडिया में उन्होंने उस टाइम पे एक भी भिखारी नहीं देखा, इंडिया का कोना कोना घुमा, इंडिया में एक भी चोर नहीं है। कितने गांव ऐसे हैं जहां पे घर के दरवाजे भी नहीं थे। इंडिया इतना समृद्ध था कि पूरे विश्व को खिला सकता है, उतना समृद्ध था। और इंडिया में इतनी नॉलेज थी, इतने टैलेंट था कि उनको जीतना बहुत मुश्किल था। ये उनके वर्डिंग्स हैं, लिखे हुए हैं। और उन्होंने बोला कि इंडिया को अगर जीतना है तो एक ही उनका लूपहोल है, उसको हमको एनकैच करना पड़ेगा। वो है कि भारत वाले समझते हैं कि अंग्रेज लोग उनसे ज्यादा सुपीरियर है, बस उसी चीज को और टूल को यूज करते हुए हमको इंडिया की संस्कृति, उनका एजुकेशन सिस्टम, सबको डैमेज करना पड़ेगा। उस टाइम की बात थी जब उन्होंने रिसर्च किया था, ब्रिटिश ने 7,32,000 गुरुकुल थे हमारे पास, हर गांव के अंदर गुरुकुल था इसका मतलब। और गुरुकुल में साइंस टेक्नोलॉजी इंडिया ही तो था, जीरो इन्वेंट हमने किया, हर चीज हमारा था। आध्यात्म सिखाया जाता था, व्यवहार सिखाया जाता था, परिवार का सिखाया जाता था, हर चीज सिखाया जाता था उसमें, कैसे लोगों से डील करना, कैसे करना। और तभी तो हम इंडिया वर्ल्ड में समृद्ध था, सबसे आगे था। तो उन्होंने देखा कि हमारे देश की संस्कृति को, एजुकेशन सिस्टम को खत्म करना है। उन्होंने इन्फ्लुएंस करके ब्रिटिश सिस्टम का एजुकेशन सिस्टम लेके आया, जो कि प्रैक्टिकली हमारे लाइफ में बहुत कम आती है। गुरुकुल में आयुर्वेद भी सिखाया जाता था, एग्रीकल्चर भी सिखाया जाता था। उस टाइम पे किसी गांव में हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं थी, ना ही कोर्ट की या पुलिस स्टेशन की जरूरत थी, ऐसा हमारा देश था। तो हमारे देश को उन्होंने इस तरह से डैमेज किया कि जब छोड़ के गए 40 करोड़ पॉपुलेशन को भी खाना खाने के लिए नहीं था, मजबूरी थी। ग्रीन रेवोल्यूशन आया, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हाइब्रिडेशन जरूरी था उस टाइम का, आया, लेकिन वो सब के चक्कर में हमारे फूड का इम्बैलेंस हो गया, क्वालिटी ऑफ फूड रिड्यूस्ड, उसके लिए क्वांटिटी तो भर गया, हर एक का पेट भर रहा है। आज हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जो अनाज की कमी की वजह से भूखा सोता होगा, उसके कर्म ही खराब है, अगर काम ही नहीं करता तो अलग बात है, अदरवाइज कमी तो नहीं है, लेकिन वो अनाज के अंदर क्वालिटी नहीं है। ये डेटा बताता है 70 साल में हमारे अनाज के अंदर न्यूट्रिशन कितना कम हुआ है। हमारे पहले बड़े लोग जो थे, हम देखते थे वो लास्ट तक बूढ़ी उम्र तक भी स्वस्थ थे, आज हमारे कितने कम उम्र में हमारी बीमारियां से ग्रस्त हो चुके हैं। लेबर थे 20 साल पहले 100 किलो का थैला आराम से उठाते थे, आज 50 किलो का कट्टा उठाना बहुत मुश्किल है। पेट तो उस टाइम पे भी भरते थे, आज भी भरते थे, लेकिन उस अनाज में शक्ति कम हो चुकी है। तो इस चीज का सॉल्यूशन क्या है? आज अन्न के अंदर पोषण कम और विष ज्यादा हो चुका है, और सॉल्यूशन एक ही है। हमको लगता है कि जो अन्नदाता आज विषदाता बन चुका है उसको वापस से रिवर्स करना है, और जो आज डेटा है कि 30% लोगों को कैंसर और बीपी हो सकता है 2040 के तक अगर ये ऐसी तरह चलता रहा, तो इसको सॉल्यूशन है हमारे पास, शाश्वत योगी खेती। अगर इस खेती को अपनाएंगे, इसको परिचय लोगों को दिलाएंगे, इसका स्वाद लोगों को चखाएंगे, सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन, एक साथ ओवरनाइट नहीं होगा, टाइम लगेगा, लेकिन सब लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे और लोगों को इसको बताएंगे तो डेफिनेटली परिवर्तन आएगा। हम फिर आने वाले स्वर्ग के लिए सात्विक अन्न की तैयारी सब मिलकर हम करेंगे, और जो लोग खेती से नहीं जुड़े वो लोग अपने घर में इसका अनुभव कर सकते हैं। गृह वाटिका में, किचन गार्डन में आप लोग प्लांट्स लगाइए, योग करके देखिए, आपको उसका अनुभव होगा, डेफिनेटली बहुत बड़ा परिवर्तन लगेगा। और इसी के साथ मैं अपना स्पीच क्लोज करता हूं। परमात्मा सबको खुश रखे, स्वस्थ रखे, सबका मंगल हो। ओम शांति।
जियो लाइफ ने सबकी लाइफ में जीने का एक नया मार्ग दिखा दिया। बहुत बहुत अभिनंदन आपको, आपके जो एक्सपीरियंस है साथ साथ आपके जो रिसर्च है, प्रैक्टिकल सबूत है, उसने यहाँ बैठे हुए काफी श्रोताओं के अंदर एक उम्मीद जगाई है, हम भी करके देखें। भारत के युवा ही भारत की शान है। अब वो युवा है जो भारत को फिर से गोल्डन इंडिया बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका बजा रहे हैं। अब हम अंतिम चरण की ओर हैं और हम आमंत्रित करते हैं आज के इस ओपन पैनल के अध्यक्ष महोदय ब्रह्मा कुमार दशरथ भाई जी से। आप पिछले 56 ईयर से राजयोग का अभ्यास करते हैं, आप बाल ब्रह्मचारी हैं, आप सिविल इंजीनियर हैं और हमारी पूर्व प्रशासिका दादी जानकी जी के पावन सानिध्य में आप पले हैं। साथ साथ आप हमारी इस कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के महाराष्ट्र प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। आपसे निवेदन है कि आप अपने आशीर्वचन हमारे बीच में रखें।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की सभा देख करके हमें बड़ा हर्ष हो रहा है, क्योंकि अनुभव सुनाने के लिए डायस पर हमारे बाला साहब भाई, जितेंद्र भाई, विनोद लाहोटी सर तथा हमारी बहन जी, जानकी बहन जी, ये भी सारी उपस्थित है, और सुनने वाले भी बड़े चातुर्क और विशेष आत्माएं हैं। आप सभी को देख करके मुझे यह एक संकल्प आ रहा है कि यहाँ सुनाने वाले और सुनने वाले सभी बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप यहाँ पर जो आए हो वो भगवान के निमंत्रण पर आए हुए हो। भले अनेकों की इच्छा हुई होंगी कि हम ये सत्र के लिए, ये प्रोग्राम के लिए आवे, लेकिन किसी को रिजर्वेशन नहीं मिला, किसी को गाड़ी नहीं मिली, किसी को छुट्टी नहीं मिली। उसका कारण था कि भगवान ने उनको बुलाया नहीं था, और जिनको भगवान ने बुलाया उनको गाड़ी भी मिली, रिजर्वेशन भी मिला और सब कुछ मिला। सिर्फ उनका बुलोना आना चाहिए। क्या है? सिर्फ उनका बुलाना आना चाहिए, और उन्होंने आपको बुलाया है। आज की सभा का विषय भी बड़ा सुंदर है, योगी खेती में विज्ञान और आध्यात्म का समायोग। विज्ञान और आध्यात्म जो है वो दोनों जब तक एक नहीं होते हैं तब तक कुछ निर्माण नहीं होगा, और अगर कुछ निर्माण हुआ, भले एक अकेला विज्ञानी आगे बढ़ता रहा, तो विज्ञान के दो पावर होती है, जिसको कहते हैं दुधारी शस्त्र। उसको दोनों शस्त्र है विज्ञान के पास, वो निर्माण भी कर सकता है, वैसा वो नष्ट भी कर सकता है। वो दोनों पावर विज्ञान के पास है। और हमने देखा 1960 में भारत में अनाज की कमी महसूस हुई, लोगों को खाना मिलना मुश्किल हुआ, तो ऐसे समय पर अमेरिका से गेहूं आदि मंगाना पड़ा, और उसके बाद केमिकल फर्टिलाइजर इसका प्रयोग खेतों में होना आरंभ हुआ, हरित क्रांति हुई। ये हरित क्रांति में सारे भारत में पंजाब नंबर वन था, पंजाब में सबसे बड़ी हरित क्रांति हुई। उन्होंने इतना गेहूं बनाया कि
कि सारे भारत देश को उन्होंने गेहूं खिलाया, लेकिन उस समय तो बहुत अच्छी बात हुई। हमारा एक अभियान निकला था कुल्लू मनाली से गोवा तक, तो उसमें हम भारत के 6 राज्यों में हमने जर्नी किया। और जब हम पंजाब के गांव में गए थे, तो पंजाब के गांव में जब गए तो कई किसानों ने, एक किसान ने तो हमको बुलाया, भाई जी आओ, और उसने उसके खेत का एक टापू दिखाया और उसने कहा कि देखो ये जो हमारा 2-2.5 एकड़ का टापू है ना, इसमें ग्रास भी नहीं आता है, ग्रास भी नहीं आता है, बोला कुछ पीक ही नहीं बनता है इसके अंदर, सारी जमीन जो है 2-2.5 एकड़ बंजर हो गई है, क्योंकि 60 साल से लेकर के इतना गेहूं बन रहा है, इतना गेहूं बन रहा है, बात मत पूछो। और आज क्या हो गया, सारी जमीन ही विषैली बन गई है। आज जमीन इतनी विषैली बन गई है कि जिस पंजाब ने देश को गेहूं खिलाया, आज उस पंजाब की ऐसी हालत है कि उस पंजाब को गुजरात से गेहूं मंगाना पड़ता है। तो उसका आज जो परिणाम हम देख रहे हैं, उस समय भले हमने बहुत पैदाइश किया, लेकिन आज हमारी पैदाइश ही बंद हो गई ना, सारी जमीन विषैली हो गई, देश की सारी जमीन विषैली हो गई। अभी सोचो आप पानी की क्या हालत हो गई है। समझो 25 वर्ष पहले क्या आपने कभी सोचा था कि 20 रुपए की लीटर पानी लेकर के हम पिएंगे घर के, 20 रुपए की बोतल में पानी पीना पड़ेगा, कभी ख्वाब में भी सोचा था? लेकिन ये प्रैक्टिकल है। आज जमीन की हालत ऐसी है कि वो कुछ पैदा नहीं करे और जो कर रही है उसके अंदर विष समाहित है। आज इतने रोग बढ़ गए हैं कि सारे हॉस्पिटल रोगियों से भरे पड़े हैं। कोरोना के पीरियड में देखा कि हॉस्पिटल में एडमिशन ही नहीं मिल रहा था। हर हॉस्पिटल में कहा जाता था कि आपका इंश्योरेंस है क्या, और खाली 1-2 लाख का इंश्योरेंस होता था तो एडमिशन नहीं मिलता था। कम से कम 5 लाख का इंश्योरेंस होगा तो अंदर एडमिशन मिलता था। ऐसी आज हॉस्पिटल रोगियों से भरे हुए हैं, ऐसी अवस्था में पानी इतना खराब हुआ है, मिट्टी इतनी खराब हो गई, अभी इसको दुरुस्त कौन करेगा? कभी कभी हम सोचते हैं इसको, समझो आदमी बीमार पड़ा तो बोले हॉस्पिटल में दुरुस्त करेंगे, सारी सॉइल का हेल्थ कार्ड बनाना पड़ा, जमीन का हेल्थ कार्ड बनाना पड़ा, ऐसी अवस्था हो गई। अभी ये सॉइल इसको कौन दुरुस्त करेगा? ये जो पानी खराब हुआ है इसको कौन दुरुस्त करेगा? अभी दिल्ली का जो डेवलपमेंट प्लान है उसमें एक प्लान ऐसा है कि दिल्ली का प्रदूषण इतना बढ़ गया है, कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ गया है कि अभी वो सोच रहे हैं कि जहां प्रमाण आती है वहां पर ऑक्सीजन का बॉक्स रखा जाएगा, और जिसको चलना मुश्किल होगा, श्वास लेना मुश्किल होगा, वो जल्दी ऑक्सीजन के बॉक्स में जाएगा, 2 मिनट ऑक्सीजन लेगा और फिर वापस अपनी गाड़ी चालू करेगा। सिग्नल का टाइमिंग भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हमने हवा खराब की, पानी खराब किया, जमीन खराब किया, अब इसको दुरुस्त कौन करेगा? तो इतना सब हो रहा है तो सोचो क्या परमात्मा खाली देखता ही रहेगा क्या? इतना अब रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है, हजारों लोग जिनका कोई दोष नहीं है, हजारों लोग मर रहे हैं, और कभी भी थर्ड वर्ल्ड वॉर के तरफ दुनिया जा सकती है। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो इतने बड़े बड़े अणुबॉम्ब का प्रयोग करके सारे समस्त मनुष्य जाति को धोखा पैदा हो सकता है। तो जबकि सारी मनुष्य जाति धोखे में आ गई है आज के समय में, तो क्या भगवान सोया हुआ होगा क्या? क्या वो सोया होगा? ऐसी बात नहीं है, भगवान अच्छी तरह से जागृत हुआ है। और 1936 में भगवान ने नई दुनिया बनाने का काम भी शुरू किया है, और वही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रूप में ईश्वर अपना काम कर रहा है। जब 36 में काम शुरू किया तो घर से काम शुरू हुआ पिताश्री ब्रह्मा के, और आज ऐसी परिस्थिति है, आज भगवान का काम इतना बढ़ चुका है, आज योग की पावर जैसे विज्ञान की पावर है ना, विज्ञान आज के दुनिया के 80% सुख, इस दुनिया के 80% सुख जो है वो विज्ञान के ऊपर आधारित है। बिजली के ऊपर 80% सुख आधारित है। अगर बिजली चली गई ना तो फिर मनुष्य आश्म युग में आ जाएगा। खाने को चक्की भी नहीं चलेंगी, समझा, लाइट भी नहीं होंगी, आप जा भी नहीं सकेंगे। तो इसलिए 80% सुख इलेक्ट्रिसिटी विज्ञान के ऊपर आधारित है, और आज वो विज्ञान मनुष्य के विनाश की तैयारी कर रहा है। इसीलिए इस विज्ञान को भी उसका सदुपयोग करने के लिए योग शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। योग के अंदर, अरे योग के अंदर क्या पावर होती है, मैं आपको प्रैक्टिकल उदाहरण दे करके बताता हूं कि 1974 की बात है, 1974 की बात है कि जिस समय जब तक साकार पिता श्री ब्रह्मा बाबा थे, तब तक भारत के 100-125 सेंटर्स, 100-125 शहर में ये विद्यालय काम करता था। और जब बाबा चले गए, पिताश्री ब्रह्मा बाबा चले गए, तो कार्य इतना बढ़ने लगा, इतना बढ़ने लगा, अव्यक्त रूप में ब्रह्मा बाबा ने जबरदस्त कार्य शुरू किया, और इतना कार्य बढ़ गया कि आज ईश्वरीय विद्यालय के भारत में 8,500 सेवा केंद्र है। कितने हैं? 8,500। आप, हम चैलेंज से आपको कहते हैं, आप भारत का कोई भी शहर बताओ, भारत का कोई भी शहर बताओ, हम आपको ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का एड्रेस बताएंगे, चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सोमनाथ से लेकर कलकत्ते तक, कोई भी स्थान बताओ, हम आपको एड्रेस बताएंगे। तो भगवान का नई दुनिया के स्थापना का काम भी गुप्त रूप में, इतने बड़े रूप में चल रहा है। 74 की बात आपको बताता हूं, 71 में पहले विदेश के लिए सेवा आरंभ हुई, जब 74 में कुछ हो नहीं रही थी विदेश में सेवा, क्योंकि भारत का कल्चर अलग है, भारत का स्पिरिचुअल नॉलेज अलग है, वहां की रीति रिवाज अलग है। तो 74 में फिर लंदन से निमंत्रण आया विद्यालय को कि आप बहने वहां आकर के सेवा करो, हम सारा प्रोविजन करेंगे। तो जब उस समय तीन चार बहनों का नाम लिया गया और उनका विदेश का प्रोग्राम बनाया गया, और जब ये पिताश्री ब्रह्मा बाबा के सामने बात रखी तो उन्होंने कहा कि ये चार लोग नहीं, जनक बेटी विदेश सेवा के लिए जाएंगी। तो वहां की दादी थी, वो बोली वो तो एक साल से बीमार है, एक साल से खटिया पर पड़ी हुई है, वो कैसी लंदन जाएंगी। तो बाबा ने कहा कि खटिया के साथ उसको भेज दो। माना परमात्मा जो है वो अपने विचारों पर बड़ा पक्का होता है। तो वो फिर ये कहा, फिर लास्ट में बाबा ने कहा बच्ची का योग कहाँ गया है, ये जो आज का योग का टॉपिक है ना, विज्ञान और ये योग शक्ति। तो बाबा ने कहा बच्ची का योग कहाँ गया, और हमने देखा जब पुणे में उनको लेटर आया कि बाबा ने कहा है आपको लंदन सेवा पर जाना है और आप तो बिस्तरे पर पड़ी हुई है। लास्ट में जो बाबा का एक वाक्य था कि बच्ची का योग बल कहाँ गया, तो उन्होंने इतनी अपने आप के अंदर इतना योग बल भरा कि जो खटिया से उठ नहीं सकती थी, 3 दिन के बाद क्या किया, उन्होंने अपने बेड के सामने बहन जी को कहा, जो असिस्टेंट बहन को कहा कि सुंदरी मेरा टीपॉय लेकर के आओ। तो बोले टीपॉय काय के लिए लाओ, बोले, और टीपॉय लाया, और फिर बोले मेरी सारी दवाइयां, उनको 9 डिसीज थे, एक नहीं 9 डिसीज थे, उन्होंने बोला मेरी सारी दवाइयां लाओ, सारी टैबलेट लाया, सारी बॉटल दवाइयों की लाई, फिर इंजेक्शन लाए, और फिर उन्होंने कहा कि वेस्ट बॉक्स लेकर के आओ। वो बोले वेस्ट बॉक्स काय को, तो दादी ने सारी की सारी दवाइयां वेस्ट बॉक्स में डाल दी और दो दिन के बाद वो उठ करके खड़ी हो गई, सारे कमरे में सारे फ्लैट में घूमने लगी। पांच दिन के बाद उन्होंने प्रवचन करना शुरू किया और सातवें दिन वो माउंट आबू में आ गए, सातवें दिन माउंट आबू में आ गए और उस अवस्था में वो लंदन को चले गए। तो ये किसके आधार पर? तो योग बल के आधार पर। तो योग बल के आधार से उन्होंने 142 देशों में यह आध्यात्मिक काम किया। तो योग बहुत बड़ा काम कर सकता है। और हम आपके लिए लास्ट में एक संदेश दे रहे हैं कि आप जो इस धरा पर आए हुए हो, इस स्थान पर आप जो आए हुए हो, वो आपके इस जन्म की पुण्याई नहीं है, इस जन्म का श्रेष्ठ कर्म नहीं है, आपके जन्म जन्मांतर का श्रेष्ठ कर्म है। जिस आधार पर आप इस भूमि पर आए हो, तो एक ही बात हम आपसे जरूर कहेंगे कि आप क्या करो, अपने को आत्मा समझो, रियलाइज करो, अनुभव करो और जो ईश्वर परमात्मा है उसे आप अपना योग लगाओ, तो आपका सारा जीवन सुख शांत में बनेगा, अपनी फैमिली, आपका गांव और सारा देश, सारा विश्व सुख शांति में बनेगा। ऐसा संकल्प व्यक्त करके अपने विचारों को समाप्त करता हूँ। ओम शांति।
लाइव एक्सपीरियंस द्वारा भ्राता जी ने हमें संस्था की कुछ महत्वपूर्ण झलकियां भी दिखा दी। संस्था के संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा के जीवन का एक अंजलि भी दिखा दी। आप सब बैठे रहेंगे क्योंकि इस सत्र के बाद का जो सत्र है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारे पिता श्री ब्रह्मा जी के जीवन कहानी का आपको दिव्य दर्शन कराया जाएगा। अभी हम हमारे वरिष्ठ भ्राता दशरथ भाई जी से अनुरोध करते हैं कि हमारे इस सत्र के अतिथि विशेष को आप सोल अढ़ाकर सम्मानित करें। और आपके हम बहुत बहुत आभारी हैं, आपके अनुभव युक्त बोलने हमारे दिल को छुआ और आपके बोल में वरदानों की झलक थी, परमात्मा प्रति आपकी श्रद्धा थी। हम सब तालियों में कंजूसाई ना करें, इस तरह ताली बजाएं ताकि आप फ्रेश भी हो जाएं, खड़े होकर ताली बजाएं, फ्रेश भी होते जाएं और मेहमानों को हम सम्मानित भी करते जाएं। आप ऐसे भी ताली बजा सकते हैं, वैरायटी तरीके हैं ताली बजाने के भी, एक्सरसाइज भी हो जाए, सम्मान भी हो जाए। आप क्लैप में भी बजा सकते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। थैंक यू। ओम शांति।